व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातां तपोनिधि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों ही विधवा हो गई। तो वे अपने पीहर आ गई। इनके पिता का नाम था जरासंध। जब जरासंध की दोनों बेटियां विधवा होकर रोने लगी तो जरासंध ने विचार किया कि हम इस पृथ्वी पर यदुवंशियों को समाप्त कर देंगे। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर वो मथुरा आया। मथुरा पर उसने हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। भगवान ने मन में विचार किया कि बड़ा अच्छा हो गया, जरासंध जी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ गए। अब जरासंध का पक्ष लेने वाले होंगे, वो सब जरासंध जैसे ही होंगे, और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जो आ सकता है तो जरासंध को तो मारना नहीं है और सेना में से किसी को बाकी रखना नहीं है। ऐसा विचार करके भगवान ने यूं ध्यान किया, उसी समय में आकाश से दो रथ आए। एक रथ पर तो भगवान विराजमान हो गए और दूसरे रथ पर हमारे बलराम जी महाराज विराजमान हो गए। शंख बजाते हुए दोनों के दोनों अपनी थोड़ी सी सेना लेकर जरासंध की सेना में घुस गए। भगवान को तो कोई डर था ही नहीं, पर मथुरा के अंदर लोग स्त्रियां सब देखने लगी, अरे कृष्ण और बलराम की तो थोड़ी सी सेना जरासंध की सेना के अंदर जाकर अदृश्य हो गई, अब क्या होगा। भगवान ने वहां जाकर ऐसा पराक्रम दिखाया, सेना का संहार कर दिया है। एक सेना थी ये एक खून की नदी के समान हो गई। लोगों के सिर थे वो कछुए के समान दिखाई देने लगे। हाथ और पैर ये कटे हुए मछली के समान दिखाई दिए। सारी सेना का संहार हुआ और जरासंध का भी रथ वगैरह टूट गया। तो बलराम जी ने जाकर जरासंध के यूं बाल पकड़े और वो जरासंध को मारने लगे। तो भगवान ने देखा कि अरे इसको मारना नहीं है, यही तो है हमारा जो सब लोगों को इकट्ठा करेगा, और इसके सामने कहूं भी क्या बलराम जी को। तो बलराम जी को कहा कि हे भैया, ये हमारे मामा के ससुर हैं, ये हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, इनको प्राण दे दीजिए, प्राण दान दे दीजिए, बड़े पुरुषों को मारा नहीं जाता है। तो बलराम जी ने कहा, कृष्ण तुमने प्राण दान दिए, मैं छोड़ता हूं, जाओ जरासंध, कृष्ण के द्वारा दिए हुए प्राण को तुम स्वीकार करो और जीते रहो, तुम्हारी जिंदगी इस अपमान के अंदर ही जीने में ठीक है। जरासंध को बड़ी शर्म आई। जरासंध ने तपस्या का विचार किया कि शेष जीवन मिला है तो जंगल में जाओ तपस्या करो, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, शत्रु के हाथ से मरना बड़ा अच्छा, परंतु शत्रु के सामने प्राणदान लेकर के जीना किसी काम का नहीं है। पर भाई मनुष्य अच्छी बात सोचता है तो उसको संगत भी तो अच्छी मिलनी चाहिए ना। बहुत खोटी संगत मिली, उसके साथी लोग थे सब बड़े उल्टे पुल्टे विचार वाले, सबने कहा क्या है कृष्ण में कोई बुद्धि थोड़ा ही है, उन्होंने तुमको छोड़ा है तो वो तुम्हारा भाग्य है, दोबारा तुम प्रयास करो। ऐसे करके उसको तपस्या से रोक दिया और दोबारा वो सेना लेकर के तैयारियां करने लगा। भगवान विजयी हो गए। अब बड़ी मस्ती के साथ भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा में भगवान का बहुत विलक्षण स्वागत हुआ है। जिधर से भी जाते हैं उधर शंख दुंदुभयो नेदू, खूब शंख बजते हैं, दुंदुभियां बजती है, भेरी और तुरिया बजती है, वीणा वेणु मृदंगाने जितने बजने के साधने सब बजते हैं वहां। भगवान अपने महल में आ गए। जो कुछ जरासंध की सेना का माल मत्ता था सब भगवान ने मथुरा में लाकर राजकोष में जमा करा दिया। ऐसे करके 17 बार वो लड़ाई किया, 17 बार वो पराजित हो गया। अब 18वीं बार वो आक्रमण करने वाला था। इधर काल यवन नाम का एक यवन था, 3 करोड़ मिलिच उसके पास में थे। उसने एक दिन नारद जी से पूछा, नारद जी संसार में मेरे से कोई युद्ध कर सकता है क्या? नारद जी ने कहा कि भाई मनुष्य तो नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? नारायण कर सकता है। नारायण कहाँ है? मथुरा में है। क्या नाम? क्या नारायण नाम ही है? नारायण तो हम बोलते हैं, वो वासुदेव है। और वो अकेला लड़ाई कर लेगा? अरे पूछे मत, क्या बताए, तुम्हारे लिए वो पर्याप्त है। कैसा है वो? 4 भुजा है, श्याम सुंदर है, पीताम्बर पहनता है, बड़ी मनमोहक उसकी झांकी है। वो एक बार किसी को प्रेम से देख लेता है, वो उसके नेत्रों में हृदय में बस जाता है। अच्छा, तो वो गया मथुरा में। इधर भगवान ने देखा कि भाई अब तो हमारे पास में 2 संकट हैं। एक जरासंध आने वाला है, अरे ये काल यवन आ ही गया, क्या करना चाहिए? बलराम जी के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक योजना बनाई कि सारी मथुरा को तो बचाना है, और 3 करोड़ मिलिच आ गए, इनसे तो क्या मथुरा वाला कोई बचेगा। तो मथुरा के वहां पर विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा को बुलाकर वहां एक नक्शा बनाया कि समुद्र के अंदर अपनी एक नगरी बनाओ। समुद्र में नगरी बनाई। बनाई कैसे? वो कागज में बनाया, देखो ऐसी नगर ऐसी सड़क होनी चाहिए ऐसा। तो जो जो भगवान बोले विश्वकर्मा नक्शा बनावे, जो बनावे तो समुद्र में बनता गया। पूरा नक्शा बनते ही वहां पर नगर का नगर बस गया। अब कहा कि अब यहां मथुरा से एक सुरंग खोदो और द्वारिका तक जाए उतनी सुरंग खोदो। द्वारिका पहुंचना है तो द्वारिका तक की सुरंग बना दी। सब प्रजा को वहां पर द्वारिका में छोड़ दिया। बलराम जी को कहा कि आप यहीं रहो और उस कालियवन से मैं युद्ध करता हूं। तो भगवान वहां मथुरा आ गए। मथुरा आकर के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए, यूं कमर पर हाथ दे करके, यहां कमर, ये कमर के अंदर एक दुपट्टा बांधा हुआ और मुरली यहां टांगी हुई और मुकुट पहना हुआ और 2 भुजा यूं है उनकी और 2 भुजा उनकी यूं है। ऐसा बड़े सुंदर ढंग से भगवान खड़े हो गए। अब वो काल यवन वो रूप देखा, अरे नारद जी ने बताया वैसा लगता है, लगता वैसा नहीं, उससे भी सुंदर लगता है। कोयम असम, कौन है? वासुदेवोयम, ये वासुदेव ही हो सकता है। देखा नहीं, आंख ऐसी खिली हुई जैसे कोई कमल के फूल को अभी अभी पानी के वहां से जो है लेकर के आए हो, ऐसा इसका ये नेत्र है। मुखार विंद के ऊपर मकराकृति कुंडलों की झाई पड़ती है, और इधर सफेद दांतों की लाल होठों पर झाई पड़ती है और वो हंसते हैं तब उसके और ही मुखमंडल की आभा होती है। वाह वाह कितना सुंदर मुख है इसका। ऐसा विचार करके और वो आया और कहने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? अजी मेरा नाम तो वासुदेव है। वासुदेव है ना, नारद जी ने हमको तुम्हारे लिए कहा था कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। ना बाबा, मैं अकेला, तुम 3 करोड़ मिलेच्छ वाले, मैं तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। देख भाई, युद्ध कर सकता है नहीं कर सकता, मैं तो युद्ध करूंगा, तू नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मैं तो करूंगा। ऐसा करके हाथ का झपट्टा मारा तो भगवान पीछे चले गए। भगवान अब आगे आगे और पीछे पीछे वो काली वन दौड़ते दौड़ते, न तो भगवान पूरे अदृश्य होते हैं, न भगवान बहुत दूर दौड़ते हैं, वो पास में दिखते भी है कि अब मिले और मिलते भी नहीं है। ये एक दशा होती है, अब मिले अब मिले अब मिले। यदि भगवान पूरे ही अदृश्य हो जाते हैं तो वो प्रयास ही नहीं करता। अब वो 3 करोड़ मिलेच्छों को छोड़ करके भगवान के पीछे दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। भगवान ने देखा कि अपने को एक में 2 काम करना है। भगवान एक गुफा में चले गए और उस गुफा के अंदर एक प्राणी रहता था, एक मनुष्य सोया हुआ था। भगवान जाकर उस गुफा के अंदर एक छिद्र था, उसमें जाकर चुपचाप बैठ गए। इतने में ही वो कालीवन आया, अच्छा हमको ठग करके आया, यहाँ करके लंबा होके पसर गया, ओहो देखा नहीं तुमको। उसने वो जोर से लात लगाई, वो एकदम कपड़ा हटा कर यूं देखने लगा। जो देखा और वो वहीं पर कालीवन धू धू करके जल करके राख हो गया। भगवान ने एक काम तो कर दिया। अब जो वो वहां भगवान ने जो है उसको देखा, वो जो पुरुष था, तो उसके लिए राजा ने कहा कि महाराज ये पुरुष कौन था? ये मुचकुंद थे, मुचकुंद मानधाता के पिता मुचकुंद, कहते हैं ये मानधाता के बेटा थे। ये मुचकुंद जी थे, वो वहां पर इक्ष्वाकु वंश में हुए हुए वो वहां थे। तो वो वहां क्यों आए? कि जो मुचकुंद देवताओं के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते हुए देवताओं ने फिर कार्तिकेय का जन्म हो गया, तब उसके बाद मुचकुंद जी को रिटायरमेंट दे दिया कि साहब अब आप आराम करो। मुचकुंद जी कितने बड़े सेवक थे भगवान के, कितने बड़े वो कर्मयोगी थे, अपना परिवार राज्य वगैरह सब छोड़ करके देवताओं के पक्ष में युद्ध किए। पीछे से बहुत लंबा समय बीत गया, उनके परिवार का कोई नहीं रहा, सब मर गए। देवताओं ने कहा कि आप जैसा त्याग दूसरा कौन कर सकता है, इसलिए अब आप हमसे कोई वरदान मांग लो, पर एक मुक्ति का वरदान मत मांगना, हम मुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम तो अभी गहरी नींद में सोएंगे और कोई हमको जगाएगा तो वो जगाएगा तो वो खुद ही भस्म हो जाएगा। भगवान ने देखा कि इस मुचकुंद को मैं दर्शन देऊं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है भगवान को बहुत प्रिय लगता है। इसलिए भगवान ने देखा कि कालयवन तो इसके द्वारा मारा जाए और ये जग जाएगा तो मैं इससे मिल लूंगा। तो कालीवन मारा गया और भगवान उसके सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। मुस्कुन ने देख कर हे को भगवान आप कौन है जी? बड़े कोमल चरण है, बड़ी आपकी सुंदर मूर्ति है, आंखों से तो कृपा टपकती है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। कौन है आप? कोई सूर्य है कि चंद्रमा है कि अग्नि है, कौन है? मेरा परिचय में देना उचित समझता हूँ, क्योंकि आपका परिचय मैं चाहता हूँ। मेरा नाम मुचकुंद है, जाने किसने मुझे जगा दिया, वो यहाँ भस्म हो गया। अब महाराज आपको होने जरा बताइए। भगवान ने कहा कि भाई क्या बताऊं, कोई मेरा एक जन्म हो, कोई मेरा एक कर्म हो, कोई मेरा एक बाप हो, एक माँ हो, एक परिवार हो तो बताऊं। तो तुम मुझसे ये पूछ लेते कि पृथ्वी पर मिट्टी के कणों की संख्या कितनी, तो मैं बता देता। आकाश में तारों की संख्या कितनी बता देता, लेकिन मेरे जन्म कर्म लीला ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। संक्षेप में बता देता हूं कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अपना लोक छोड़कर मैं यदुवंश में आया हूं, और कालनेमी जो कंस बनकर के आया था उसको मैंने मार दिया है। लोग मुझे वासुदेव के नाम से कहते हैं, और तुमने जो देवताओं के पक्ष में होकर अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, सब कुछ तुमने त्याग किया है, उस त्याग के बदले मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। तुम्हारे मन में कुछ भी वरदान है, आप वरदान मांग लो। तो हमारे मुचकुंद जी बोलने लगे, विमोहितोऽयं जनैषमायया। बस महाराज यही आकर के जीव फंसता है। आपकी माया में जब ये जीव मोहित एक बार हो गया, बस फिर इस चक्कर में पड़ता ही रहता है। वो इस माया में पड़ने पर कितना बड़ा अनर्थ होगा इसको वो जानता नहीं है। जैसे कोई बिजली का पट्टा चलता और उसमें एक बार फंस गया तो उसकी क्या दशा होगी, कितनी बार वो उस पट्टे के साथ आएगा, फट पड़ेगा, कोई उसकी संख्या नहीं होती, ऐसे उसकी दशा होती है। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, और मानव शरीर सब अंगों से युक्त है, फिर भी महाराज इसमें हम लोग भजन नहीं करते और घर गृहस्थ के काम धंधे में फंसे हुए काम करते, फंसे हुए होकर। गंदा शरीर है, मैला शरीर है, इस शरीर को हम मैं मान करके राजा पड़े का घमंड करते हैं। एक दिन काल के मुख में हम लोग बिल्कुल निगल लिए जाएंगे, इस बात को याद भी नहीं रखते हैं, और राजाओं पर चढ़ाई करते हैं, उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर ली, उसको जीत लिया, उसको जीत लिया, लेकिन हमारा मन स्त्री ने जीत लिया। जब तक हमारा मन स्त्री ने जीत लिया, तब तक हमने किसको जीत लिया, हार गए हम। इसलिए महाराज हमको सत्संग दीजिए, वरदान के लिए कहा ना, एक तो आप हमको संतों का संग दीजिए, और कुछ नहीं चाहते हम। क्योंकि लौकिक पदार्थ वैभव यदि इनको भी चाहें और सत्संग न मिले, इनका अच्छा उपयोग और उपभोग नहीं हो सकता। सत्संग के बाद तो यदि संसार का वैभव भी मिलता है तो उसका बहुत अच्छा सदुपयोग हो सकता है। सत्संग मिलने के बाद यदि हमको महान दरिद्रता मिलती है तो भी कोई हर्जा नहीं है। सत्संग मिल जाएगा तो फिर मिली भी हर परिस्थिति का बहुत अच्छा उपयोग कर लेंगे। इसलिए संतों का संग चाहिए। इसलिए महाराज मैं तो संसार में बहुत अनादिकाल से संतप्त हो रहा हूं, कहीं मुझे शांति नहीं मिलती है। अब आपके चरणों में मुझे शांति मिलती है। भगवान ने कहा, वाह राजन, मैंने तो तुमको बहुत मोहित करने के लिए कहा था कि वरदान मांगो, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, मेरे से भक्ति मांगी है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक एक भाई बहन भी ध्यान से सुने, और मैं भी इस बात को खुद कहता हुआ भी ध्यान से सुनूं, तब मेरी भी शोभा है। ध्यान से सुनने का अर्थ आप सुने, मैं तो सुना लगे, मैं तो मेरा काम ऐसा नहीं है। मुझे भी ध्यान से सुनना, आप और हम सब एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ा ही है। अब देखो कैसी विचित्र बात भगवान कहते हैं, कि मेरे वरदानों से उनकी बुद्धि ही जो है भिन्नती है, उनकी बुद्धि में ही भेद होता है जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं। मेरे अंदर भक्ति करने वालों के बुद्धि में कभी भी वरदान आदि का लालच नहीं आता। इसलिए देखो, युंजाना नाम अभक्ता नाम, ध्यान से सुनना, प्राणायामादिभिर मन अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। हे महाराज मुस्कुंद जी, इस दुनिया में सब अपने मन को वश में करने की बात सोचते हैं कि मन को वश में करें। मन को वश में करने के लिए मूलाधार से वायु को ऊपर उठाएंगे, मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र में फिर उस वायु को लाएंगे, फिर मणिपुर चक्र में वायु को लाएंगे, फिर विशुद्ध चक्र में लाएंगे, फिर आज्ञा चक्र में लाएंगे, फिर सहस्रार में लाएंगे। ऐसे छह चक्रों को भेदती भेदती वायु यह आती है और उसके बाद उसका कल्याण हो जाए संभव नहीं है। कोई बंक नाल से वायु को ऊपर उठाएंगे, कोई अपने अंदर एक नस है वो सांप की तरह कुंडली लगाई हुई है नाभि के यहाँ, प्राणायाम के द्वारा उस नस को ऊपर उठाएंगे, वो नागिनी की तरह यहाँ गले तक जाएगी। वो नस जब ऊपर आती है तब उसको तालु देश में हमारे अमृत का निवास है, वो अमृत का घूट पीती है। इसको कुंडलिनी जागृत अवस्था बोलते हैं। और जब वो जागृत रहती है ऐसी मस्ती, इतना अलौकिक आनंद रहता है। परंतु वो भी फिर आगे जाकर सर्पणी उल्टा मुंह करके बैठ जाती है, फिर वही दिन और वही रात। माने प्राणायाम आदि के द्वारा मन को वश में तो कर लेते हैं, परंतु मन के अंदर वासना रहती है संसार की, लौकिक वासना, उस वासना का त्याग नहीं करते। तो ऐसा मन वश में किया हुआ काम भी क्या आएगा। पातंजल योग में एक विभूति पाद है, उसमें बताया है कि मन को जिस चीज को आप चाहते हो उसमें एकाग्र करो और जो वहां की विधि है उसके अनुसार प्राणायाम करो, आपको वो चीज मिल जाएगी। सब प्रकार की सिद्धियां मिल जाएगी जैसी चाहोगे, वैसा अनुष्ठान होना चाहिए। परंतु वो चीज मिलने के बाद तुम्हारी अंतःकरण की स्थिति तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको मिलेगी चीज ही ना, धनी तो मिला, विभूति तो मिली, कल्याण तो नहीं हुआ। एक आदमी रुपए के द्वारा वस्तु को लाता है और एक आदमी अपने सिद्धियों के द्वारा वस्तुओं को लाता है, बात तो बराबर ही हुई। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, उन महात्मा के कई शिष्य थे। महात्मा जी का देहांत हो गया, शिष्य अपने अपने मर्जी आए वहां जग गए, चले गए, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। ऐसे करते करते दो शिष्य एक बार अकस्मात मिल गए। अरे आओ गुरु भाई, अरे गुरु भाई, वाह 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 वाह, गुरु जी के जाने के बाद तुमने क्या किया। अच्छा तुमने क्या किया, कि भाई हमने तो गुरु जी ने जो बताया भगवत स्मरण में लगे रहे। क्या भगवत स्मरण में लगे, हमने तो बहुत कुछ पाया। क्या, देखो ये नदी है, इस नदी के ऊपर मैं पट 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 करता चला जाऊं, अभी खड़ा हूं पहना हुआ, पानी में नहीं डूब सकता, ऐसी सिद्धि प्राप्त की है। तुमने क्या प्राप्त किया। मैंने क्या प्राप्त किया तो ये तो मैं नहीं बता सकता गुरु भाई, लेकिन तुमने जो प्राप्त किया ये तो दो पैसा प्राप्त किया तुमने। दो पैसा, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की, भले आदमी दो पैसे की बात करते हुए, दो पैसे की बात हुई, मैं समझा नहीं दो पैसा कैसे है। भाई तुम इस पानी के ऊपर पैदल चल सकते हो, डूबोगे नहीं, यही तो बात है कि ये कम है क्या। अच्छा हम इस नाविक को दो पैसा दे देंगे, नाव वाले को, भैया हमको इधर पार कर दो, तो दो पैसा तो बहुत बड़ी होती थी उस समय में, दो पैसे की रकम कम थोड़ी ही थी। हम एक नाविक को कहेंगे ले भाई दो पैसा ले ले, हमको उधर वो उधर छोड़ देगा। बताओ तुम पानी के ऊपर गए और हम नौका में बैठ के गए, क्या फर्क पड़ा ये बताओ, क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा भैया। इसी प्रकार से ये सिद्धियों में कोई नहीं है, भगवान का भजन करो और अपने मन को निर्विकार बनाओ। भगवान बोलते हैं कि अक्षीण वासनम राजन, अपने प्राणायाम के द्वारा मन को खूब वश में कर लिया, थोड़ी देर के लिए समाधि लग गई, कई दिनों की समाधि लग गई, कई महीनों की भी लग गई, पर वो समाधि से उतरते हैं तो मन में संसार की इच्छाएं तो वैसी कूदती रहती है, तो फिर फायदा क्या हुआ समाधि से। हमारे मन में देखो दो दोष है, एक तो चंचलता का दोष है और एक हमारे विकार दोष है। विकार ये काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, ये भी ये मन का दोष है, और एक चंचलता, ये दो है मन की विकृतियां। इसमें लोग चंचलता पर तो ध्यान देते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, माने 100 में से 100 कहे तो कोई हर्जा नहीं, पर 100 में से 99.99 आदमी यही बात बोलते हैं। हम लोगों की सबकी यही एक सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी भागवत के अनुसार कुछ है ही नहीं, बीमारी तो यह है कि काम क्रोध लोभ ये पैदा होता है। तुम्हारे मन में वरदान देने पर लोभ पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई कामना पैदा नहीं हुई, ये हमको बड़ी बात दिख रही है। मन एकाग्र कोई हमको बड़ी बात नहीं दिखती है, भगवान खुद बोलते हैं। युंजानानाम भक्तानाम प्राणायामादिभिर मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम्। खूब दिनों तक समाधि लगाई, समाधि। एक संत थे, वो कई दिन तक निराहार रहते थे, समाधि लगाई, समाधि से उतरने के बाद उनके सामने भोजन की लिस्ट रखी जाती थी कि महाराज अब इसमें से कौन सा भोजन करोगे, तो वे संत अपनी रुचि की तरफ ध्यान देते कि मेरी क्या रुचि है, कहां ये रुचि है, चलो ये भोजन लाओ। वह समाधि का क्या अर्थ हुआ भाई, समाधि का अर्थ क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं हुआ। अक्षीण वासनम, यदि वासना क्षीण नहीं हुई और मेरे अंदर प्रेम पैदा नहीं हुआ तो आप कितनी समाधि लगाओ कुछ नहीं होता। जाओ तुम मेरी भक्ति करो और अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होगे, बहुत बड़ा तुम्हारे द्वारा भक्ति का प्रचार होगा। मुचकुंद जी आ गए और वो वहां से भगवान अदृश्य हो गए। वो वहां पर्वत से देखने लगे क्या है क्या है, देखने लगे तो भाई देखा कि छोटे छोटे पौधे हैं, ये पेड़ छोटे छोटे हो गए, आदमी भी छोटे छोटे हैं। वो त्रेतायुग के समय का आदमी था। अरे हमारे जैसे छोटे छोटे कद वालों को देखा, छोटे छोटे हमारे जगह आदमी नहीं है। वो गंधमादन पर्वत पर चले गए, वहां जाकर के उन्होंने खूब भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इधर भगवान ने क्या किया कि वे भगवान पुनरावृज्य पुरीम यवन वेष्टिताम हत्वा अमलिच्छ बलम निन्ये, उस मुचकुंद का उद्धार किया और वापिस वे मथुरा आए। और मथुरा आकर के जितना वहां 3 करोड़ मिलेच्छों की सेनाएं थी सबका संहार किया और सारा धन उन्होंने द्वारिका में पहुंचा दिया। और अब भाई जरासंध भी आया, जरासंध आया तो भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम जी अब लड़ने की जरूरत नहीं है, एक अपने पास शस्त्र और है क्या, भग जाओ, शत्रु आवे तो भग जाओ। कह रहे कृष्ण तूने ऐसा किया कि अभी किया मैंने, मुचकुंद के समय में ये काली हवन आया था तो मैं तो काली हवन के सामने भगा तो भगत वो हार गया हूं, अब जरासंध आवे अपने भग जाओ, अच्छी बात है भग जाओ। तो आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे जरासंध। तो एक ऐसे पर्वत पर भगवान चले गए जहां खूब वहां पर जो है बरसात होती रहती, चारों कुंट में बरसात थी, खूब बरसात उस पर्वत पर। जरासंध ने उसमें आग लगाई। अब बताओ बरसात जहां होती वहां आग क्या काम आए, उसकी अकल काम नहीं की। और भगवान वहां से कूद फांद करके वापस द्वारिका में आ गए। जरासंध ने देखा कि कृष्ण और बलराम तो मर गए होंगे। अब विवाह की बात आई तो देखो बलराम जी के तो एक विवाह था तो एक ही श्लोक आया, एक श्लोक बस, एक श्लोक। वो श्लोक यह है कि अनर्त देश का राजा था रेवत, उसका बेटा था कुकुदमी, उसकी पुत्री थी रेवती, उसके साथ बलराम जी का विवाह हो गया क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको यही बात कही थी। एक श्लोक में विवाह हो गया। अब आओ देखो, अब भगवान का विवाह करना है। और देखो भाई शादी विवाह में तो आपको मालूम ही है, एक शादी होती है जिसमें कितना समय लगता है। यहां 16108 शादी करनी है और आप हम सभी भगवान के बराती हैं। थोड़ा वो समय लग जाए तो आप हमको बार बार घड़ी यूं देख देख करके और संकोच में मत डालना। 16108 क्या चीज है ये खास देखने की है। भगवान अपि गोविंद उपये मे कुरुद्व। भगवान अपि, भगवान ने भी शादी कराई, भगवान ने भी कराई, ये अर्थ, ये तो एक तरह से कोई छोटी सी बात है, भगवान ने भी कराई तो क्या मुख्यता बलराम जी की और गौणता है क्या भगवान कृष्ण की? कि नहीं, ये बताना चाहिए भगवान अपि, यहाँ अपि एवार्थक है, एव भगवान ने ही ब्याह कराया किया है। तो भगवान ने ही एवार्थक अपि है, अपि के कई अर्थ होते हैं, अपि माने भी और अपि माने एव भी होता है। भगवान अपि गोविंद उपये मे कुरुद्व। अरे आओ वह परीक्षित सुनो, तुम शादी की बात है तो शादी तो भगवान ने ही की है। अब कहते हैं कैसे की, किसके साथ? कि भाई विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी के साथ किया। और कैसे क्या, सब राजाओं के बीच में साल वगैरह बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए उनके पक्ष में जाकर, जैसे गरुड़ है वो अमृत के कलश को ले आए, ऐसे भगवान सबके बीच में रुक्मणी को ले आए और डंके की चोट का आगे, आओ किसी में ताकत है तो आओ हमारे पास आओ। राजा ने कहा महाराज हमने तो सुना कि भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया था। देखो हमारे उद्धव जी पहले कह के आए थे कि गांधर्व वृत्ति से विवाह हुआ है और परीक्षित कहते हैं कि राक्षस विधि से विवाह हुआ है और स्वयं रुक्मणी भी कहती है कि राक्षस विधि से विवाह हुआ है। तो गांधर्व वृत्ति से हुआ कि राक्षस वृत्ति से हुआ है? भाई सब बातें सब ठीक है, जिसके मुंह से जो बात निकलती है वो ठीक निकलती है। उद्धव जी बड़े श्रद्धालु थे, वो राक्षस विधि का विवाह बोल नहीं सकते थे। कैसे कहें, उद्धव जी ऐसा बोलते अच्छे नहीं लगते। परीक्षित एक जिज्ञासु है, इसलिए परीक्षित ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि वो राक्षस विधि से विवाह हुआ, ये क्या बात है? और रुक्मणी है वो भगवान की इसी ढंग से उपासना करती थी, इसलिए उसने राक्षस विधि को स्वीकार किया है। पर हमारे सुखदेव जी महाराज इस कथा में और ही ढंग से बात करते हैं। राजा ने कहा महाराज इस कथा को विशेषता से सुनाओ। महाराज खूब सुनी हुई है कथा, पर सुनने का उसी कोई अधिकार है जो उस कथा को नए नए ढंग से सुनता है। कथा को कभी ऐसे मत सुनोगे तो हमने सुनी है, उबासी खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, ऊँगते रहेंगे, पैर पसार लेंगे, एक पैर को ऊंचा करेंगे, एक पैर को नीचा करेंगे, क्या करें, समय पूरा होता नहीं है। ऐसा नहीं, कथा को नए ढंग से सुनो, नए ढंग से। श्रोतज्ञो नित्य नूतना, सुनी हुई कथा है फिर भी आपको नई लगनी था, ऐसा तो हमने पहले सुना ही ना हो, पहली बार ही सुन रहे हो, ऐसे सुनना चाहिए। स्वयं परीक्षित बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लो सुनो, देखो भीष्मक नाम के एक विदर्भ देश के राजा थे, उनके 5 लड़का थे और एक राजकुमारी थी, एक लड़की थी, सबसे छोटी थी रुक्मणी। तो 5ों भाइयों का और माँ बाप का रुक्मणी पर बहुत प्यार था। तो इस रुक्मणी ने जब ये विवाह की योग्य हुई, उससे पहले ही उसके घर पर संत महात्मा आते रहते थे, नारद जी वगैरह आते रहते थे, उनके पास में बैठती, पूज्य जाए छोटी सी बच्ची, उनके पास बैठती, वो कहते बेटा सुनो, द्वारिका में एक कृष्ण है, बड़े श्यामल है, बड़े सुंदर है, बड़े हृदय के कोमल है, वो अनाथनाथ है, जगन्नाथ है, पतित पावन है। ऐसे करके भगवान के अंदर की सुंदरता और बाहर की सुंदरता, दोनों सुंदरताओं का वर्णन किया। तो वो छोटी सी बच्ची वो सोचती थी कि वे मेरी को भी शादी करेंगे तो मैं तो ऐसे कृष्ण से शादी करूंगी। छोटी सी बच्ची तो नारद जी से पूछती कि नारद जी वो कृष्ण मुझे भी मिल सकते हैं? अरे बेटा वो कृष्ण मिलने के लिए ही होते हैं, मिले नहीं वो कृष्ण थोड़ा ही होता है, वो तो मिलने के लिए ही होते हैं। बहुत राजी होगी, वो कृष्ण हमको मिलेंगे। मनी मन में कि मैं कृष्ण से मिलूंगी, कृष्ण मुझसे मिलेंगे, ये उसकी एक भक्ति हो गई अंदर ही अंदर। और जब वो तू बड़ी हुई और जब उसकी शादी की चर्चा होने लगी तो राजा के मन में था कि इसका विवाह कृष्ण के साथ करें। चारों भाइयों का भी विचार था कि कृष्ण के साथ शादी करें, परंतु एक रुक्मी था, उसने कहा नहीं नहीं कृष्ण के साथ क्या करना है, मेरा मित्र शिशुपाल, शिशुपाल के साथ शादी करेंगे। तो वही शिशुपाल के साथ शादी करना तय कर दिया, रुक्मणी से भी नहीं पूछा। ये रुक्मणी क्या चीज है बता देंगे। अब जो है रुक्मणी ने देखा कि भाई शादी मेरी शिशुपाल के साथ, कोयम शिशुपाल है ना हम वेदमितम, कौन शिशुपाल, में एक कृष्ण के अलावा संसार में किसी को जानती भी नहीं हूं और मेरे से बिना पूछे शादी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सोचा बिचारी का, कुछ पार नहीं पड़ा, तो एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता से कहा कि आप जाओ और ये हमारे गुप्त संदेश है, ये जाकर आप कृष्ण के सामने निवेदन कर दो। वो ब्राह्मण वहां से रवाना हुआ और भगवान के वहां द्वारिका में पहुंचा। भगवान ने उसका बड़ा सम्मान किया, खिलाए पिलाए बैठाए, उसके बाद पूछा कि आप कौन देश से आए महाराज, आपके मन में कोई असंतोष तो नहीं है, जहां से भी आए वहां की प्रजा बड़ी सुखी होगी। ब्राह्मण का जो संतोष होता है वो संतोष सब जगह फैल करके सबको सुखी बनाने वाला होता है। ब्राह्मण के अंदर यदि असंतोष आ जाए तो उस ब्राह्मण का पतन है, चाहे वो कितना ही विद्वान हो और कितना ही पढ़ा लिखा हुआ हो। तो मुझे आप सब बात बताइए, कौन देश से आए हैं, क्या काम है आपका मुझसे, सब बात बताओ। तो उस ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरे मुंह से मैं क्या कहूं, मैं विदर्भ देश से आया हूं, वहां की राजकुमारी ने आपको ये संदेश दिया है। भगवान ने कहा लाओ भाई क्या संदेश है। अब रुक्मणी का संदेश वो ब्राह्मण भगवान को दे रहे हैं, भगवान उस संदेशों को पढ़ रहे हैं। रुक्मणी ने बहुत भाव से लिखा है पत्र, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्चित्तमपत्रपं मे। हे सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, श्याम सुंदर, मैंने कोई भक्ति तो की नहीं है, केवल तुम्हारे गुणों को सुना है, कानों से सुना है, कानों से, कोई मैंने मन लगा करके भी नहीं सुना, कानों से सुना है, पर सुनते ही मेरे हृदय का संताप दूर हो गया। तो मेरे मन में ये बात बैठ गई कि संसार में नेत्रों का फल तुम्हारे रूप देखने के लिए ही मिलेगा, नेत्रों का अंतिम प्रयोजन तुम्हारा दर्शन ही है। ऐसा विचार करके मैंने अपने मन से लज्जा संकोच सब का त्याग कर दिया है और ये मेरा मन आपके अंदर निसंकोच समाने के लिए आकुल व्याकुल हो रहा है। आपके बराबरी तो हम नहीं है, पर हम करें भी क्या, जब हमको किसी न किसी को वर्ण करना ही है तो त्रिलोक सुंदर त्रिभुवन सुंदर आपको छोड़कर हम किसका वर्ण करें बताओ। मैंने आपको अपना पति बना लिया है, मैंने अपने आप को आपके अर्पित कर दिया है, ऐसा न हो कि सिंह की वस्तु को कोई गीदड़ खा जाए। मैंने इस जन्म में पूर्व जन्म में कुछ भी यदि श्रेष्ठ कर्म किया है, पूर्त कर्म इष्ट कर्म किया है, उसके फल में कुछ नहीं चाहती, केवल आपको चाहती हूँ, मैं आपकी हूँ, आपकी रहना चाहती हूँ, मुझे शिशुपाल आदि से कोई मतलब नहीं है। आप मेरे विवाह से एक दिन पहले आ जाना। और महाराज मैंने सुना है कि जो जिस भावना से आपकी उपासना करता है आप उसकी भावना को स्वीकार करते हो, तो मेरी ये भावना है कि आप राक्षस विधि से मुझे सेना के बीच में से उठा करके ले जाइए। और आप यदि ये सोचते हो कि रुक्मणी तुम तो महलों में रहने वाली हो, मैं महलों में कैसे पहुंचूंगा, और वहां यदि पहुंच भी जाऊंगा तो वो बड़े बड़े राजाओं और सेनाओं के बीच में तुझे कैसे उठा पाऊंगा, क्योंकि महल में तो ऐसे रहते नहीं है, महल के बाहर सेना रहती है। ऐसा यदि आपके मन में हो तो मैं आपको उपाय बताती हूं। शादी से एक दिन पहले हमको देवी की यात्रा करनी पड़ती है। उस देवी की यात्रा के समय में सब सेना, सब लोग, सब राजा महाराजा सब रहते हैं साथ में। उस समय आप सबके बीच में आओ और आकर के सबको अपनी आंख दिखाओ और आप मेरी भुजा पकड़ करके सबके बीच में ले जाओ और कहो कि रुक्मणी को मैं ले जा रहा हूं, है किसी में दम तो आओ मेरे साथ कोई युद्ध करो, ऐसे आप ले जाओ। हमने सुना है कि महाराज आपके पास में की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यदि मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ चली गई तो मैं दूसरे के साथ तो शादी करूंगी नहीं, दोबारा जन्म लूंगी, फिर तिबारा लूंगी, तो सौ सौ जन्म तक आपको मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। ये महाराज गुप्त संदेश है। भगवान ने कहा तभी तो ब्राह्मण मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही है। मैंने देखा कि कोई भक्त मुझे बहुत आतुर होकर के पुकार रहा है, यही थी वो रुक्मणी। चलो, क्या रुक्मणी ने किसी से सलाह ली? नहीं महाराज, किसी से सलाह नहीं ली, हम भी किसी से सलाह नहीं लेते। भगवान ने दारुक को बुलाया, रथ पर बैठे ब्राह्मण देवता भगवान और सर सपाटे करते विदर्भ नगर के लिए रवाना हो गए। बलराम जी से सलाह नहीं ली, माँ बाप से सलाह नहीं ली, पहला विवाह हो रहा है इनका, किसी से भी सलाह नहीं ली। क्यों नहीं ली? कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उसने भी मेरी आराधना में किसी की सलाह नहीं ली, न बाप की सलाह ली, किसी की सलाह नहीं, संतों ने कहा और उसने मुझे मान लिया, तो मुझे भी ब्राह्मण ने कहा और मैंने भी मान लिया, मैं भी क्यों पूछूं। भगवान रवाना हो गए, इधर बलराम जी को पता चला, अरे कृष्ण कहाँ गया? तो भाई कृष्ण तो विदर्भ गया, तो वो अपनी सेना लेकर के बलराम जी भी रवाना, अरे वो बच्चा है, छोटा है, कोई उत्पात कर बैठेगा, अकेला है, चलो मैं भी चलूं। बलराम जी बहुत पीछे गए। और इधर भाई कुंडिनपुर में तो बड़ा भारी स्वागत समारोह हो रहा था, शिशुपाल के विवाह की तैयारियां हो रही थी रुक्मणी के साथ, सब घर महल को सजाया गया, सारी पुरी को सजाया गया। और उधर वो शिशुपाल है, वो वहां से बहुत मस्त होकर के रवाना होता है, सबको वो मोबाइल करता है, जरासंध जी आप भी आ जाना, शाल्व जी आप भी आ जाना, और पौंड्रक तुम भी आ जाना, विदुरथ तुम भी आना। कि भाई बार बार तुम हमको क्यों बोलते हो कि सेना लेकर आना? क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण का डर है कि कहीं कृष्ण पहुंच जाएगा तो मेरी शादी होने नहीं देगा। अच्छा तो ठीक है, हम सब सेना लेकर के आते हैं। तो कहा पौंड्र काद्या सहस्र सह, हजारों हजारों की संख्या में वो लोग आए और सब कुंडिनपुर में सारे, वहां जो भी आता है वहां जोर से आवाज जाती है महल में, अमुक देश के महाराज पधार गए हैं, अमुक देश के महाराज पधार गए हैं। वो ध्यान से सुनती है, कोई ऐसा भी कहता है क्या कि द्वारिका से कृष्ण पधार गए हैं? कोई आवाज नहीं आई, और वो ब्राह्मण देवता भी नहीं आए। मन में सोचा कि अरे राम राम राम, मेरी बात थोड़ी कोई कृष्ण सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जैसी बहुत सी रुक्मणियां संसार में रहती है, किन किन को वो शादी करेगा, किन किन से विवाह करेगा, ऐसा मेरा पुण्य है कहां? वो बिचारी अधीर होकर के महल में बैठी रही, चिंतित होती, रोती रही रोती रही। इतने में वो ब्राह्मण देवता है और वो यूं देखने लगी, अरे वो ब्राह्मण आ रहा, उनका चेहरा कैसा है? उनका चेहरा तो प्रसन्न दिख रहा है, पर वो कुछ बोलते नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है, क्या बात है, किसी से मिलते नहीं, सीधे मेरी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे देखते जो ही पास में आए तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद देगा, बेटा तेरा काम पूरा हो गया, कृष्ण यहाँ आ गए, इस कुंडिनपुर में आए हुए हैं, तुम अपनी अधीरता छोड़ दो, वो आ चुके हैं। बहुत प्रसन्न हुई वहां, यहाँ इस कुंडिनपुर में, यहाँ कुंडिनपुर में आ गए। महाराज पंडित जी, मैं आपको क्या इस शुभ समाचार के बदले में दूं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, मैं आपको प्रणाम कर सकती हूँ? ब्राह्मण को तो प्रणाम चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम के बदले में, प्रणाम चाहिए नहीं तो प्रणाम के बदले में उसको भूरी से आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण को किया हुआ प्रणाम आशीर्वाद में हमको वापस कितना सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, उस प्रणाम के बदले हमको देता है वो। ब्राह्मण खुश हो गए। इधर राजा को पता चला कि कृष्ण आए हैं, अब राजा बड़ा खुश हो गया, अरे बिना बुलाए कृष्ण भी आ गए तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमने तो बुलाया नहीं था फिर भी आए हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे कन्या के विवाह की शोभा ही बढ़ेगी, जितने देश के लोग आएंगे उतनी शोभा बढ़ेगी। अब जाकर के और जो है उनके पास में ये लोग पहुंचे, पहुंच करके और जो है उनके साथ उनका बड़ा स्वागत किया, भगवान कृष्ण का, बलराम जी का स्वागत किया। आइए महाराज, बैराज जी ने, वो एक बाहर उपवन में बगीचे में ठहरे हुए थे। उस समय में राजा के साथ में बड़े बड़े और लोग थे, नगर के प्रतिष्ठित जन, सबके मन में विचार आया, क्या करें, कौन समझाए राजा को, कौन समझाए रुक्मी को, अरे इसके साथ, कृष्ण के साथ शादी करो ना, हमारे जवाई होने के लायक तो ये कृष्ण ही है, तो कौन कहे क्या कहे, सब चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण थोड़े घूम करके भी आए नगर में, तो हर व्यक्ति के मन में एक ही बात थी, हर स्त्री के मन में एक ही बात थी कि हमारे जवाई होते तो कितना अच्छा होता। भगवान वापिस अपने उपवन में आ गए। दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन तो भाई अब क्या था, वो अपने महल से रवाना हुई रुक्मणी, खूब अच्छा श्रृंगार किया हुआ उसका, बहुत अच्छा वस्त्र पहना हुआ। वो जब से महल से यूं सीढ़ियों से उतरती है तब से वो कृष्ण पर नजर रख रही है, किधर है किधर है। घूंघट निकाली हुई कपड़े के अंदर से दृष्टि को देखती है वो, और देवी के मंदिर तक जाती है, कहीं कृष्ण उसको नहीं दिखाई दिए। देवी के मंदिर में जाती है, वहां जाकर उसके चारों तरफ ब्राह्मणियां बैठी है, वो कहती है बेटा देवी से वरदान मांगो कुशल क्षेम के लिए, दाम्पत्य जीवन के अभ्युदय के लिए देवी से प्रार्थना करो। हम जो मंत्र बताते हैं उन मंत्रों का तुम उच्चारण करो। सब मंत्रों का उच्चारण करके अपनी तरफ से उसने एक मंत्र बोला, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे पार्वती मैया, मैं आपको आपके संतानों सहित सबको बारंबार प्रणाम करती हूँ। बस मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरे पति कृष्ण ही होने चाहिए, इसमें आपका अनुमोदन चाहिए मुझे। आप हाँ में हाँ मिला दो कि बेटा तेरा ये संकल्प बहुत शुभ है, बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर देवी को प्रणाम किया और फिर वो देवी के मंदिर से धीरे धीरे सोपान मार्ग से सीढ़ियों से उतरने लगी। तभी उसने देखा कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब उसका हृदय एकदम धक धक करने लग गया, अब क्या होगा, हमारे महल तक यदि वो नहीं आए तो फिर तो आना ही नहीं होगा। बहुत घबराहट, बड़ी बेचैनी, बड़ी व्याकुलता हो गई। और जो जो वो व्याकुल होकर के अपने पैर रखती है ना, देखो भगवान की भक्ति कैसी होती है, भक्ति की सुंदरता का प्रभाव शरीर पर सब पर पड़ता है। वो सब सेना उसके साथ में थी, पर प्रार्थना करके आई और भगवान के लिए विवल हुई। लोगों को तो पता नहीं, उस समय में जिन लोगों ने उसके दर्शन किए रुक्मणी जी के, सब दर्शन करते भी आह हमारे देश की राजकुमारी कितनी सुंदर है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, इसके अंगुली में जो अंगूठी है उस अंगूठी की कैसी अलग आभा है, चमक है। ये जब इसका हाथ हिलता है चमक हमारे आंखों पर पड़ती है, अरे चमक भक्ति की है। प्रभु क्या जाने उनके पास शस्त्र थे, वो शस्त्र छूट गए, हाँ मुंह फाड़े फाड़े देखते रहे, सब भूल गए कि हम क्या देख रहे हैं और हम किस लिए आए हैं यहाँ। सबके शस्त्र छूट गए और सेवम सनैश्चलयति तल पद्मकोशौ, वो धीरे धीरे चलती, समय निकालती, कृष्ण आ जाए कृष्ण आ जाए, धीरे 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 चलती है। और फिर वो नीचे देखती है, फिर देखती है, इधर देखती है उधर देखती है। उसकी घबराहट को केवल वो ही जानती है या अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती है, साथ वाली बोलती है चलो 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 देवी चलो, वो ऐसे करती तो है, वो चला जावे तब ना। ऐसे चलते चलते दूसरे देखा कि एक बहुत द्रुत गति से रथ आ रहा है और उसके घोड़े जमीन पर पैर मानो रख ही नहीं, टप 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 यूं ही उछलता उछलता रथ आ रहा है। उसने देखा ओहो, और वो रथ खुद ही चला रहा है, उसी के हाथ में रश्मियां हैं और वो यूं निर्भीक होकर रथ में खड़ा खड़ा और रथ को तेजी से चलाता चलाता उसी मंदिर की ओर आ रहा है। हो ना हो यही कृष्ण होना चाहिए, देखती रही एक तक देखती रही हूं। बात ही बात में अब वो रथ जो ही पास में आया और कृष्ण ने उसको और उसने कृष्ण को देखा, यही कृष्ण है। कृष्ण ने हाथ आगे किया, रुक्मणी का हाथ लिया, रथ में बैठाया और गर्जना करते शंख बजाते भगवान कृष्ण रुक्मणी को ले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लोगों को पता तक नहीं चला कि इस समय में क्या कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद काना पूछी, क्या हुआ क्या हुआ? एक तेजी से रथ आया था, कैसे चला गया? हमने उसको रास्ता भी दे दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वो रुक्मणी को साथ में ले गया है। धिग आसमान अहो धिग आसमान यश आत धनवनाम गोपई रिधम केसरीणाम मृगई रिव। सिंहों के बीच में जैसे कोई पशु अपने सिंहों के रहते हुए पशु अपने दूसरे पशु आकर कोई चीज ले जाए, ऐसे हम लोगों के खड़े थे। कृष्ण यहां से ले गया रुक्मणी को, धिक्कार है हमको, धिक्कार है। वो तो धिक्कार धिक्कार करते रहे और भगवान कृष्ण तो भाई वहां से ऐसे तेजी से दौड़े, तो भाई दौड़ते दौड़ते बहुत दूर पहुंच गए। इधर शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल तो भाई वहां पर बैठे सबके बीच में अपना भू भू करके वो तो रोने लग गया। शिशुपाल ने देखा कि अरे मैंने यहां आकर के अपनी मट्टी पलीत कराई, बहुत सुष्यत वदनम उसका मुंह सूख गया। शिशुपाल जब रोने लगा तो जरासंध जी आए, शिशुपाल जी रोने से क्या होगा, मैं उसके साथ बहुत बार लड़ा हूं, 17 बार उसने मुझे हराया है, 18वीं बार अंतिम विजय मेरी हुई है, अब तो सेना ले और उस पर चढ़ाई करके रुक्मणी को लाओ, तभी पार पड़ेगी, रोने से पार नहीं पड़ेगी। शिशुपाल ने हाथ जोड़ दिया, आप जैसे मित्रों को हाथ जोड़ता हूं। शिशुपाल तो अपने गांव चला गया, बेचारा रोते भी लगते। अब उसको रुक्मी था भाई, वो रुक्मी कृष्ण भगवान के पीछे पीछे गया, सबके बीच में प्रतिज्ञा करके गया, या तो मैं अपनी बहन को कृष्ण से छुड़ा करके ले आऊंगा, और यदि नहीं लाऊंगा तो मैं कुंडिनपुर में प्रवेश ही नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वो गया। इतने में ही बीच में बलराम जी ने देखा, इधर से जाएंगे, बलराम जी महाराज भी खड़े हो गए। सेना का श्रृंगार तो बलराम जी ने किया, और रुक्मी जो बड़े वेग से भग के गया, भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ। अब भगवान ने उसके सारथी को और सबको मार दिया, अकेला रह गया, और भगवान ने तलवार निकाली, तलवार निकाल के मारने के लिए दौड़े, उतने में ही रुक्मणी भगवान के और रुक्मी के बीच में खड़ी हो गई, अपने भाई को बचाने के लिए बहन खड़ी हो गई, और भगवान से कहा कि महाराज बहन के सामने आप भाई को मारेगी, बहन कैसे सहन करेगी, क्षमा कीजिए, आप मेरे भाई को मत मारिए। भगवान ने कहा रुक्मणी तुमने कह दिया, तुम्हारी कही हुई बात मैं मान लूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई से पूछो कि तुम्हारे मन की बात ये मानने के लिए तैयार था, तुम्हारे मन में क्या बात थी, तेरा भाई नहीं माना, तेरे मन की बात को मैं मानूंगा। रुक्मी बहन की बात के मन की पूरी करने की सोचो। भगवान ने जाकर उसको रस्से से बांध दिया, रथ के पीछे बांध करके, और वही तलवार थी, उस तलवार से साले बाल उतार दिए, उसको रुंड मुंड बना दिया, और रुंड मुंड बनाया। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखा कि रुक्मणी आज पहली बारी तो आई है, और 24 घंटे हुए नहीं है, और ये यदुवंशियों में आएगी, इसके मन पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए देखो बलराम जी ने सब परिवार वालों को शिक्षा देने के लिए एक ऐसी नीति अपनाई है, जो परिवार में सब लोग अपनाए तो परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या नीति? कहने लगा अरे अरे कृष्ण, ये तो अच्छा नहीं किया तुमने, तुम मारने के लिए तैयार हो गए, आखिर तुम्हारी स्त्री का ये भाई है, तुम्हारा सगा संबंधी है, सगा संबंधी को मारा नहीं जाता है, ये अच्छा नहीं किया तुमने। भगवान कुछ नहीं बोले, बड़े अब बलराम जी ने रुक्मणी से कहा, देखो रुक्मणी क्षत्रियो का धर्म बड़ा कठोर होता है, वो जिस समय शस्त्र लेकर खड़े होते हैं उस समय ये नहीं देखते कि उनके साथ मेरा पारिवारिक संबंध है क्या, उसके साथ बाणों का संबंध होता है, क्षत्रिय का परिवार बाण होते हैं, शस्त्र होते हैं, क्षत्रिय का परिवार ये वो नहीं होता। इसलिए तेरे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि देखो ये यदुवंशी सगे संबंधियों के साथ व्यवहार करना नहीं जानते हैं। परंतु देखो कृष्ण, अपने किसी सगे संबंधी को मुंडित कर देना, अपमानित कर देना, ये मारने के समान ही तो होता है। क्या प्राण वियोगी मरना होता है? अपमान है, ये मरना नहीं होता। तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। देखो रुक्मणी, ये मान अपमान जीना मरना ये सब भाग्य से होता है, प्रारब्ध से होता है। और प्रारब्ध की एक अपनी सीमा होती है, वो सीमा आत्मा तक नहीं पहुंचती, आत्मा का प्रारब्ध नहीं होता है। प्रारब्ध उनसे होता है जहां से प्रारब्ध का निर्माण होता है। प्रारब्ध का निर्माण क्रियाओं से होता है, क्रिया शरीरों से होती है और शरीर तक ही प्रारब्ध का फल होता है। आत्मा न घटता है, न बढ़ता है, न जन्मता है, न मरता है, न शोक को न हर्ष को किसी को भी प्राप्त नहीं, आत्मा आत्मा ही रहता है। इसलिए ही रुक्मणी आत्म तत्व पर विचार करो और सुखी हो जाओ। ये बात सुनकर के और सुखी हो गई। तो यहां बलराम जी ने क्या किया, परिवार में क्या करना चाहिए, किन्हीं का भी मनमुटाव होता हो, मालूम चले कि मनमुटाव है तो एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अगला पक्ष बिल्कुल ही निर्दोष हो, उसको भी देखो भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए दोनों को कुछ न कुछ कहना चाहिए। जिसकी ज्यादा गलती उसको तो कहना ही चाहिए, पर दूसरे को, भगवान की कोई गलती नहीं थी, भगवान कृष्ण की कोई गलती नहीं थी, तो भी बलराम जी ने कृष्ण को उपालंब दिया। और रुक्मणी की भी कोई गलती नहीं थी, रुक्मणी की कोई गलती नहीं, पर रुक्मणी को भी कहा कि ऐसे नहीं, तुम ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, वैसे सोचो। तो भाई परिवार में आपस में रहो तो कभी कुछ बात स्वभाव के टकराट की बात हो जाए तो जो बड़े पुरुष होते हैं उनको सहन भी करना चाहिए और एक दूसरे को रोकना भी चाहिए। तो इधर भाई फिर उसको मुक्त कर दिया, रुक्मणी के भाई को छोड़ दिया। रुक्मणी का भाई फिर वो अलग ही जगह चला गया, उसने एक भोजकट नाम का अलग ही नगर बसाया, वहीं पर रहने लगा। और भगवान द्वारिका में आए और द्वारिका में आने के बाद सब राजाओं को निमंत्रण दिया, आ जाओ साहब, अब हमारे यहाँ विवाह होगा, हम ही विवाह करेंगे, हमारे स्त्री के साथ हम विवाह करेंगे, आ जाओ आप। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। द्वारिका में भगवान पहुंचे तो द्वारिका में भगवान का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। कुरु श्रृंजय केकय विदर्भ यदु कुंतय कुंती, इन देशों के राजा लोग आए और सबके बीच में वहां पर अग्नि की साक्षी में रुक्मणी के साथ भगवान का बड़े आनंद के साथ जैसे झांकी दिख रही है ऐसे वहां विवाह हुआ। अब देखो विवाह की बारात आ रही है और विवाह को बड़े गाजे बाजे के साथ किया होगा। उसकी मामूली सी एक सात्विक झांकी है, सात्विक झांकी हो माने उसमें कोई नाच गान वगैरह कुछ नहीं है, भगवान के विवाह के उल्लास का एक प्रतीक अपने लोग मना रहे हैं। वो रुक्मणी यहाँ रुक्मणी के विवाह में कैसा आनंद था वो बता रहे हैं। देखो इसमें लिखा है रुक्मणी द्वारिकायाम अभूत राजन महामोद है, वहां बहुत आनंद हुआ ना, इसलिए ये आनंद की बात बता रहे हैं। आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, बैंड बाजे वालों को आगे आने दीजिए।
हो गया।
अब हम चालू करते हैं भाई हमारा मंदिर। अब आप विराजो। ध्यान दो तरफ बटेगा, श्रोताओं का अच्छा नहीं लगेगा। आप सब बैठ जाओ। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं और आप लोग बैठ जाओ। देखो, ये विवाह का प्रसंग सुनाते सुनाते सुखदेव जी महाराज बड़े विभोर हो गए। ये पहली तो ये देखना है कि रुक्मणी क्या चीज है। रुक्मणी है, ये अहम तत्व है। अहम तत्व महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान की आठ पटरानियां थी ना, उनमें एक भूमि थी, एक जल तत्व की देवी, भूमि देवी जल तत्व की देवी, एक वायु की, एक अग्नि की, एक आकाश, और एक मन, एक बुद्धि और एक अहंकार। ये आठ पटरानियां हैं, उसमें अहंकार है। ये रुक्मणी देवी अहंकार ही रुक्मणी देवी के रूप में आई है। सबसे बड़े सबसे बड़ी रानी ये है पटरानी। पटरानी माने भगवान ने अहंकार को भी वश में किया था। एक अहंकार विकृति वाला अहंकार होता है, एक अहंकार प्राकृत तत्व होता है। ये प्राकृत तत्व वाला अहंकार है। हम जो किसी चीज का अहंकार करते हैं वह अहंकार नहीं है, ये प्रकृति का एक तत्व है, वो अहंकार है। उस प्रकृति के तत्व को भगवान ने वश में किया है। कहते हैं उस रुक्मणी के पहली संतान हुई थी, वे थे हमारे प्रद्युम्न जी। जब भगवान शंकर ने तपस्या की, कामदेव ने बाधा पहुंचाई, भगवान शंकर ने उसको जला दिया क्रोधाग्नि से। तब कामदेव की पत्नी थी रति, उसने शंकर जी से कहा, महाराज मेरे पति को आपने जला दिया, क्या होगा? कि नहीं कोई बात नहीं, जब कृष्ण का पहला विवाह होगा तब उसका जन्म हो जाएगा। इधर क्या हुआ कि एक शंबरासुर रहता था द्वारिका में छिपा हुआ। उसको नारद जी ने कह दिया कि देख, कृष्ण का जो पहला बेटा होगा ना, उसके द्वारा तेरी मौत होगी। तो शंबरासुर इसी बात की ताक में था कि कृष्ण का विवाह कैसे होता है। तो ये हो गया विवाह पहला। अब विवाह के बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसको पलने में से उसने उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया और मछली के पेट में चला गया वो छोटा सा बच्चा। और एक मछुए ने कई मछलियों में उस मछली को पकड़ लिया और वो मछली बड़ी सुंदर अच्छी लग रही थी, तो वो ले जाके उसी शंबरासुर को दे, महाराज कितनी बढ़िया मछली है महाराज, ओहो बड़ा अच्छी मछली, ओहो बहुत अच्छी है। उसने अपने रसोईदार को दे दिया कि चलो आज इस मछली का ही भोजन बनाओ। वहां एक मायावती नाम की एक दासी रहती थी। नारद जी ने कह दिया कि इस मछली के पेट में तेरा पति है, वो मायावती वो रति बनकर रही थी। तो नारद जी ने कहा अब तेरा पति इस मछली के पेट में से निकलेगा। तो उसने रसोइये से कहा कि ये मछली मुझे दे दो, इसका भोजन मैं बनाती हूँ। तो दे दिया, उसको क्या पता क्या है। बड़े सावधानी से उसमें से बच्चे को निकाल लिया। पाला पोसार बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो देखो ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। ये बड़ा हो गया, उसको कई विद्या भी सिखाई, परंतु उस मायावती के क्रियाकलाप से वो प्रद्युम्न जी सोचने लगे कि भाई आपने तो मेरा माता के समान पालन किया है, पर आपकी क्रियाएं माता के समान मालूम नहीं दे रही है। उसने कहा मैं आपकी मां हूं भी नहीं, पहले आप इस शंबरासुर को मारिए। तब शंबरासुर को पता चला कि कोई योद्धा मेरे यहाँ रह रहा है। फिर शंबरासुर का और प्रद्युम्न का आपस में युद्ध हुआ, उसने उसको मार दिया। मारने के बाद मायावती ने उस प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिका में पहुंचा दिया और वो महल में आ गया। महल में आकर वो खड़ा हो गया और वही कृष्ण भगवान आ गए, वहीं पर रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने देखा ही, देखी और रोने लगी। भगवान ने कहा, रोती क्यों? मेरा बेटा यदि आज जीवित होता तो ये प्राणनाथ ऐसा का ऐसा होता, इतना ही बड़ा होता, इतना ही खूबसूरत होता। कहा कि तुम्हारा बेटा है कि नहीं, यही तुम्हारा बेटा हो तो? ना ना, आप तो मुझे बहुत सांत्वना देते हो, ये बेटा थोड़ा ही है। अब देखो रुक्मणी जी उसको देखती है, याद करती है और उनके दूध आ जाता है, दूध टपकने लगता है, रुक्मणी के दूध आ जाता है, परंतु विश्वास नहीं होता कि यही बेटा है। उसी समय में आकाश मार्ग से नारद जी आए। नारद जी ने कहा, क्या बात हो रही है भगवान? रुक्मणी जी क्या बात है? हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्र के विषय में भ्रम हो रहा है। ये हमारे आर्य पुत्र तो बता रहे हैं कि तुम्हारा ही पुत्र है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं विश्वास दिलाता हूं, ये आप ही का बेटा है। अच्छा, ये मेरा ही बेटा है? हाँ, देखो ध्यान से देना, ध्यान से। रुक्मणी को पति के वाक्य पर विश्वास, भगवत वाक्य पर विश्वास नहीं हुआ, संत वाक्य पर विश्वास हुआ। संत वाक्य कितना असर करने वाला है कि भगवान के वाक्य पर विश्वास नहीं हुआ और संत वाक्य पर विश्वास हो गया। रुक्मणी ने जाकर उसको अपने छाती से लगाया, आओ बेटा, आओ आओ आओ। फिर नारद जी ने सब कथा सुनाई, रुक्मणी जी आपका इसलिए बेटा है, ऐसे शंबरासुर को मार के आया है, जैसे पूतना को मारा तुम्हारे पतिदेव ने, ऐसे इनका पुत्र भी तो ऐसा ही होना चाहिए, जो सूतिका गृह में किसी को मारे तब देखो बेटा भी पिता के समान होगा। अरे नारद जी, आपने तो निहाल कर दिया, निहाल कर दिया, महद आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। प्रद्युम्न जी क्या बताएं, ऐसे थे परीक्षित कि कृष्ण और प्रद्युम्न में भेद नहीं होता था। 16,108 माताएं थी, उन माताओं के किसी भी महल में प्रद्युम्न जी चले जाते ऐसा लगता कि सर कृष्ण तो नहीं आ गए, हमारे प्राणनाथ तो नहीं आ गए। फिर बाद में बता रहे, नहीं, अयम अस्माकम पुत्र है, ये तो हमारा बेटा है। ऐसे उनको भ्रांति हो जाती थी, ऐसे थे वो। और दूसरा विवाह हम तुमको बताते हैं। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी था, उसकी कन्या थी सत्यभामा। उसने कोई कृष्ण के साथ अपराध कर दिया सत्राजित ने, तो अपने अपराध को धोने के लिए उसने अपनी कन्या का विवाह कराया। ऐसे तो हम राजी नहीं होंगे महाराज, भगवान के विवाह की कथा है, आप क्यों समय का संकोच करते हो? खुल्ला खुल्ला बोलनिया, क्या कथा है, आप स्पष्ट बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो सत्राजित नाम का एक यादव सूर्य भगवान की उपासना में लगा। सूर्य भगवान ने उसको एक मणि दे दी। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो अब ध्यान से सुनना, ये तो एक शब्द है, क्या क्या आप ध्यान से सुनेंगे? आपने क्यों, कौन कौन सी चीजें, यहां तो सब चीजें ऐसी है। देखो मणि प्रसंग तो और भी विचित्र है, ये मणि प्रसंग है, देखो सबकी बुद्धि खराब हो जाती है मणि में, बड़ों बड़ों की, देखना आप। सत्राजित को सूर्य भगवान ने एक मणि दे दी, मणि, और उस मणि का ये वरदान था कि ये जहां भी रहेगी 64 मण सोना पैदा हो जाएगा, 8 भार, एक भार में 8 मण और 64 मण सोना रोज पैदा हो जाए। एक दिन वो भगवान के पास आया महल में। भगवान ने कहा, सत्राजित जी, 64 मण सोना रोज पैदा करने वाली मणि को रखना आफत मोल लेना है, मृत्यु मोल लेनी है, कोई मार देगा आपको। इसलिए इस मणि को आप राज खजाने में जमा करा दो, 64 मण सोने से प्रजा की सेवा करेंगे। एक जगह ही सब धन इकट्ठा हो जाएगा तो वो प्रजा का ही तो इकट्ठा होगा, वो प्रजा की सुख सुविधा से ही तो हट करके आपके पास पैसा आएगा, क्या फायदा उससे? मरोगे तो आपको नरक मिलेगा, धन में वासना रह जाएगी। क्या हाँ, सोचेंगे समझेंगे पूछेंगे। भगवान ने कहा हमारी बात भी सोचने लायक होती है, बिचारेंगे साहब, सोचेंगे नहीं तो बिचारेंगे। भगवान ने देखा कुछ नहीं है, वो खाली भगवान ने तो कहा सही बात, उसने दी नहीं मणि। अब 17 जितने ले जाकर मणि अपने घर पर रख दी। 17 जित का एक भाई था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने वो जो है मणि लेकर गले में डाली, कैसा लगता हूं? अरे बहुत अच्छा लगता हूं इससे तो। अब मणि पहन करके वो शिकार खेलने गया, घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने गया। मार्ग के अंदर उसको सिंह मिल गया, उस सिंह ने घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। और वो मणि सिंह ने ली, चमकने वाली मणि, वो मणि लेकर के पंजे में लेकर के या मुंह में लेकर के जो है सिंह वहां से दौड़ा दौड़ा गया, कोई मेरे पीछे ना आ जाए। सोचा कि किसी पर्वत गुफा में जाकर छिप जाऊं, तो वो दौड़े दौड़े गए तो एक पर्वत गुफा थी, बहुत गहरी गुफा, उसमें चले गए। वहां गए तो भाई वहां तो जामवंत जी बैठे हुए थे। जामवंत जी हो, राम जी के काल में राम जी जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा, वो जामवंत जी वहां बैठे हुए। जामवंत जी ने देखा कि ये चमकीली मणि लेकर के सिंह आया मेरे रहते हुए, सिंह को मारना चालू किया। वो सिंह को बुरी तरह से मार दिया और मणि खोस ली और मणि जामवंत जी के पास रही। जामवंत जी ने कहा मणि मिल गई, निहाल हो गए। अरे राम जी मिले थे तो निहाल नहीं हुए, और आज मणि मिल गई तो क्या निहाल हो गए, तो निहाल हो गए। सबकी बुद्धि खराब करेगी ये मणि। लोग कहता हमको धन मिले धन मिले धन मिले, अरे धन से तो ये दशा होती है बड़े बड़े भक्तों की। अब क्या हुआ कि वो तो वो जो है मार दिया उसको सिंह को। उधर वो 17 जी देखता है मेरा भाई शिकार खेलने गया था, आया नहीं है, क्या बात है। उसने अपने अपने प्रेमी से कहा देख भाई तुमको बात कहता हूं आगे मत कहना, क्या कृष्ण ने मेरे भाई को मरा दिया वो मणि के पीछे, कृष्ण ने मरा दिया। अच्छा, किसी से कहना नहीं। जो आदमी ये कहता हो ना किसी से कहना नहीं, वो बात तो आदमी जरूर किसी न किसी को कहता है, या तो कहो ही मत, किसी से नहीं कहे ऐसी बात ही मत को, अपने है जो बात कह दो, नहीं कहना चुप रहो। पर किसी से नहीं कहना ये संपुट लगा के बात कहोगे तो वो किसी न किसी को कहेगा ही। क्यों? क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है कि प्रेम से हृदय द्रवित होता है, उसका जो प्रेमी होगा उसको वो बोल देगा। उसने जिसको कहा उस आदमी ने अपने किसी प्रेमी को कह दिया एक बात है भाई किसी से कहना नहीं, हमको 17 जीत कह रहा था, कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया और मणि ले ली, पर कहना नहीं आगे, नहीं हम क्यों कहेंगे। अब उसने जाकर के और किसी को कह दिया किसी से कहना नहीं कृष्ण ने ऐसा मार दिया, ऐसा 17 जीत ने उसको कहा और उसने मेरे को कहा, उसने और किसी को कह दिया, ऐसे करके और किसी ने जाकर कृष्ण को ही कह दिया कि वो उसको 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 ऐसे ऐसे बात चली। अच्छा, मेरा नाम लगाते हैं। तो भाई द्वारिका वालों को इकट्ठा किया भगवान ने कि चलो भाई मेरे साथ प्रसेन की खोज करते हैं। खोज करने गए तो घोड़े के पीछे चलते चलते यही देखो ये यहां पर घोड़ा मरा पड़ा है। सिंह ने मारा, यदि वो सिंह के खोज है। अब सिंह के खोज के पीछे पीछे चलो, चलते गए चलते गए चलते गए, ये देखो गुफा आई है। अब गुफा में झांक के देखो तो गुफा बड़ी गहरी गुफा आई। देख करके भगवान ने कहा देखो तुम लोग तो यहां रहो, मैं अंदर जाता हूं। भगवान उस गुफा में गए, गुफा में गए तो वहां जामवंत जी को देखा, छोटे छोटे बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे थे उनको देखा, मणि का बड़ा दिव्य प्रकाश। जो ही भगवान वहां पहुंचे तो जामवंत जी ने देखा कि इस मणि को लेने के लिए कोई आया है। तो जामवंत जी आव देखे न ताव देखे, जाते ही भगवान के धक्का मुक्की, निकलो यहां से, निकलो, क्यों आए तुम, निकलो यहां से, निकलो निकलो। जामवंत जी मेरी बात तो सुनो, जामवंत जी मेरी बात सुनो, मैं आपका मित्र, आप हम पहले रामावतार, कोई रामावतार नहीं, कोई कृष्णावतार नहीं, कुछ नहीं, तुम भगो यहां से, तुम कौन हो, भगो यहां से। उनके तो एक ही बात देती है, मणि ले जाएगा। भगवान ने उनको बहुत समझाया, माने नहीं, भगवान के लाते लगाई, मुक्के मारे, तो ही भगवान खाते रहे। जामवंत जी मेरी बात तो सुनो आप, जामवंत जी तो बस बात सुने ही नहीं। तब भगवान ने कहा अच्छी बात, अब लड़ना ही है तो आ जाओ लड़ लो। भगवान ने उठा उठा के उनको पटकना चालू किया, एक बार पटका, दो बार पटका, दाएं से पटका, बाएं से पटका, उल्टा पटका, सुलटा पटका, फिर जा भगवान ने उसको पटक छाती पर बैठ गए, गले पर बैठ गए, आओ। अब वो पड़े पड़े बोलते, आप साक्षात संपूर्ण प्राणियों की आत्मा होने वाले भगवान विष्णु हैं, आप ही ने रावण के वध के लिए समुद्र पर पुल बनाया था, ओहो आपके क्लेश मात्र क्रोध से रावण जैसा शक्तिशाली प्रतापी सम्राट, प्रतापी राजा भी वह ध्वस्त हो गया। हे विष्णु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा ये बात पहले ही बोल देते, मुझे आपको मारना पड़ा, अब मुझे आपका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो भगवान उस सारे शरीर पर हाथ फेरने लगे, ऐसे उन्हें सारे शरीर पर, बताओ कहाँ कहाँ चोट आई, थोड़ी पसली, यहाँ दर्द हो रहा है, भगवान ने यहाँ थोड़ा मसला, अब ठीक हो गया हमारा, अब स्वस्थ हो गया, मेरे से अपराध हो गया, ये मणि के कारण से मेरी बुद्धि खराब हो गई। महाराज आपके कृपा से अब मेरे मन से ये सब भ्रम जाल दूर हो गया, ये मणि ले जाओ महाराज। आप रामावतार के समय में आपके साथ इसीलिए साकेत में नहीं गया था कि कृष्णावतार में आपके दर्शन करूंगा, लेकिन इस कृष्णावतार में आपके और मेरे मिलन में इस मणि ने कितनी बाधा, कितना अपराध करवा दिया। जामवंत जी भगवान के चरणों में रो रो करके लुढ़क लुढ़क के क्षमा याचना करने लगे, महाराज मैं क्या दूं, अपने आप को दे दिया मैंने, इस क्षमा के बदले क्या दूं, मैं अपराध कर दिया मैंने। फिर कहा महाराज ये मणि तो आप ले जाओ और मेरी एक पुत्री है जाम्बवती, इसको भी आप ले जाओ। ये जाम्बवती कौन है, ये आकाश तत्व है। आकाश होता है ना, आंधी तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट, गर्मी सर्दी सब में वो स्वच्छ और निर्मल रहता है, आकाश ऐसा ही होता है। तो ये जाम्बवती है, ये हमारे इनकी कन्या जाम्बवान की कन्या। तो देखो जाम्बवती इसने बिल्कुल अपने पिता को और भगवान को किसी को कुछ दोष नहीं लगाया। तो भगवान इतना मारने लगे बाप के, बाप को बेटी के सामने मारने की, बेटी कितना चिल्लाएगी, कितना बोलेगी, कुछ नहीं बोली, वो निर्विकार खड़ी रही। आकाश में देखो कोई तूफान का आकाश पर असर नहीं होता, तो ये आकाश तत्व है जाम्बवती। भगवान जाम्बवती को लेकर और उस मणि को लेकर द्वारिका के लिए रवाना होते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से, इधर भगवान रवाना होते हैं, उधर द्वारिका के अंदर भगवान को लेकर के बड़ी घबराहट पैदा हो गई हमारे देवकी जी के मन में, अरे कृष्ण नहीं आया, क्या करे। वो बैठी बैठी विष्णु भगवान को याद करती है। वो परम वैष्णव है और इधर रुक्मणी जी वो अपने सासू जी को बोलती है, माता जी मुझ पर संकट पड़ा था, मैं जब कृष्ण के बिना रह नहीं सकी तो मैंने गौरी से पार्वती से प्रार्थना की थी, आप दुर्गा पार्वती के मंदिर में पधार सकती है, क्या मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कर सकती है। तो कहा चलो चलो बिल्कुल चल सकते हैं। देखो एक वैष्णव है एक शैव है, आराधनाओं में अंतर है, परंतु एक दूसरे का आदर और एक दूसरे का समन्वय भाव देखिए। अपने घर में यदि कोई बहू रानी आए, वो यदि अपने पीहर से शंकर जी को मानती है और आपके घर में सदा से लड्डू गोपाल की पूजा होती है, तो आप उस बहू को कभी मना मत करना कि तुम शंकर की उपासना छोड़ो और हमारे लड्डू गोपाल की उपासना करो, ऐसा मत करना। उसकी चल रही आराधना, उसके संस्कार, उसके मन के भाव, उसको पुष्ट करो कि बेटा हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की होती तो है, लो तुम्हारे लिए एक मंदिर पास में हम भगवान शंकर का और बना देते हैं, शंकर जी की पूजा करने दो। आगे जाकर दूसरा कोई ऐसा परिवार मिले कि वो गणेश जी की पूजा कर रहा, तुम गणेश जी की पूजा करो। जो जिसकी उपासना करता है उस उपासना में किसी प्रकार से अपनी उपासना का सांकर्य मत करो, दबाओ मत। कई कई जगह ऐसी कले की बात हमने सुनी है कि भाई हम तो वैष्णव है, हम शैव पूजा तो यहां करते ही नहीं, हमारी अनन्यता खत्म होती है। इससे अनन्यता खत्म नहीं होती, अनन्यता खत्म होती है भगवान की उपासना के साथ जगत के साथ प्रीति रखना, यह है अनन्यता की दोष की बात, यह अनन्यता में आने वाला दोष यह है। भगवान के किसी रूप को मानने वाला और वो दूसरे रूप का भी कोई मानने वाला हो दूसरा, तो उसमें विखंडितना माने अश्रद्धा पैदा नहीं करना चाहिए, उसका नाम अनन्यता नहीं है। तो भाई ये काम हमारे देवकी जी ने बड़े सहर्ष स्वीकार किया, वे मंदिर में गई और वहां जाकर के दुर्गा की पूजा की। महामाया दुर्गा की पूजा करते ही भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती उस मणि के साथ वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सारे पूर्वासी आनंद में विभोर हो गए। फिर वहां राजसभा के अंदर सत्राजित को बुलाया और कहा कि तुम्हारी मणि यही है ना, क्या महाराज ये लो तुम्हारी मणि। सत्राजित को बड़ी शर्म आई। सत्राजित ने कहा महाराज मैं अपनी कन्या आपको देता हूं और ये मणि भी आपको देता हूं। भगवान ने कहा मणि तो मैं लूंगा नहीं, तुम्हारी कन्या जरूर ले लूंगा। वो कन्या कौन है? ये भूमि देवी है, सत्यभामा है, ये भूमि देवी है। कैसे भूमि देवी? आगे अपने आप बोल देंगी ये भूमि देवी, अपने आप बात आगे आ जाएगी। तो ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ, अहम तत्व के साथ और आकाश तत्व के साथ और भूमि तत्व के साथ। इधर सुखदेव जी महाराज अब आगे बात बताते हैं कि भगवान हस्तिनापुर गए थे, ये सुनकर के भी पांडव लोग लाक्षागृह में जल गए। भगवान को पता था जले नहीं है, पर सब जगह हल्ला है तो हल्ला है तो ठीक है, भगवान ने कहा अपने व्यवहार निभाया। वो गए हस्तिनापुर, अब पीछे से वो अक्रूर जी हो कल कैसे जल में डुबकी लगा लगा के भक्तियां कर रहे थे, उन अक्रूर जी का माथा खराब हो गया। अक्रूर जी देखने लगे कि भाई ये मणि हमको मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो अक्रूर जी ने और कृत वर्मा ने दोनों ने मिलकर के शत धनवा को बहकाया, अरे शत धनवन ये जो सत्राजित है ये अकेले ही रात में रहते हैं, मणि ले आओ ना, तुमको भी एक दो दिन का 64 मन सोना, दो दिन का 128 मन सोना, तीन दिन का आता हो तो और ऐसे करके चार पांच दिन तुम रख लेना, बाकी हमारे पास पड़ा रहेगा। क्या अच्छी बात है महाराज। तो अक्रूर जी को जो कह दिया ऐसा। अब आप सोचिए, अक्रूर जी इतनी भक्ति करने वाले थे, अक्रूर जी के मन में क्यों आई है? ये मन में इसलिए आई, देखो भगवान को कल लेकर पहुंचे थे, अक्रूर जी ने कहा कि महाराज आप मेरी कुटिया में आइए, मेरे परिवार को पवित्र कीजिए, मेरे मकान को पवित्र कीजिए, ये जो मेरी की जो रचना थी इसमें वो बने हुए थे। भगवान की भक्ति भी थी और जगत के साथ ये ममता भी थी। ये ममता और भक्ति दोनों में जो है, यद्यपि भक्ति ज्यादा थी ममता बहुत कम थी, लेकिन भगवान ने देखा इनकी ममता को उजागर किया जाए। देखो कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर गांठ है, ये मानो इस चमड़ी के अंदर नीचे गांठ है, तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके और अंदर की गांठ को जो है वो बाहर निकालता है, फिर उसका सब कचरा मवाद वगैरह साफ कर देता है। ऐसे ही उनके अंदर छिपी हुई एक जगत की ममता थी, उस ममता को निकालना बहुत जरूरी था। तो वो कब निकाला जाए, जब वो प्रकट हो थोड़ी, तो अक्रूर जी के मन में ये वासना पैदा होगी कि हमको ये मणि मिले। शतधन्वा ने जाकर रात्रि में हिंसा कर दी, सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर के भग गया। इधर सत्यभामा को पता चला कि मेरे बाप को मार दिया, वो हस्तिनापुर जाकर कृष्ण भगवान को रथ में लेकर आई। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और वे शतधन्वा के पीछे दौड़े, बलराम जी को भी साथ में लिया, आप भी चलो। अब शतधन्वा घबरा गया कि कृष्ण और बलराम तो छोड़ने वाले नहीं, उसने वो मणि अक्रूर जी को दे दी। अक्रूर जी मैं तो इनके चक्कर में अब छूटूंगा नहीं, मर जाऊंगा, ये मणि आप रखो, अक्रूर आला दे दे। अक्रूर जी ले मणि लेकर गए और द्वारिका से भग गए। अक्रूर जी भग गए अपना। अब भगवान और बलराम जी दोनों गए शतधन्वा के पीछे पीछे। अब देखो बलराम जी की भी बुद्धि खराब होती है, कोई नहीं बचा एक भगवान के अलावा। जाते 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 भगवान ने कहा, भैया आप यही रहो, मैं उसको मारने के लिए मैं आगे जाता हूं। बलराम जी समझ गए मुझे यहां रोक करके ये जा रहा है, इसका अर्थ है कि मणि ये ले लेगा और मैं यहां टक टक आए थे देखता रहे, वो टक टक करता ही रहूंगा। बलराम जी वहां पर खड़े रहे। भगवान ने जाकर शतधन्वा का सिर उतार दिया चक्र से और जाकर उसके जो है जेब वगैरह सब संभाली, संभाली तो मणि नहीं मिली। बलराम जी को आकर कहा कि महाराज मणि तो नहीं मिली। बलराम जी के मन में विश्वास नहीं था। बलराम जी का अच्छी बात है, कहीं रख दी होगी, ऐसे बोले वो दबे दबे जैसे जैसे, और देखना और अच्छी बात है कहीं रख दी होगी, ऐसे बोले वो। कृष्ण भगवान समझ गए कि इनके मन में ये विषय है कि कहीं कहीं झूठ बोलता है। तो भैया वो तो क्या पता कहाँ रखी है, मुझे तो पता नहीं, चलो चलो अपने द्वारिका चलते हैं। क्या करूं द्वारिका चल के, थोड़ा इधर घूमने की मन में आ रही, द्वारिका जाने की मन में नहीं आई हमारे। क्यों नहीं आई, मणि नहीं थी। बात ये थी, मणि हो तो बलराम जी भी टप टप करते आ जाते, मणि नहीं थी। गए आए बेचारे, बलराम जी गए वहां दुर्योधन के पास, कृष्ण के साथ थोड़ा मन में आ गया ना, दुर्योधन के पास। ए दुर्योधन आ, तेरे को गदा युद्ध सिखाऊं, आज ही आपको गदा युद्ध सिखाने का मौका मिला। दुर्योधन का महाराज बहुत अच्छी बात है, सिखाओ। उनके साथ गदा युद्ध का होने लगा। थोड़े दिनों के बाद बलराम जी आ गए। इधर क्या हुआ कि द्वारिका में अकाल पड़ने लगा, तो लोगों की आदत है बरसात नहीं हो रही है, क्योंकि चौमासा करते ना इसलिए बरसात नहीं हो रही, ये अमुगण ऐसा करते हैं इसलिए बरसात नहीं हो रही है, ये ऐसा करते हैं बरसात नहीं हो रही है, ऐसी सब बातें करते हैं। बरसात रोकना और बरसात करना कोई मानवीय शक्ति के अधीन है क्या? कितने कितने जीवों का प्रारब्ध होता है वो, कितने जीवों का प्रारब्ध, वो एक व्यक्ति के प्रारब्ध से इतने जीवों का प्रारब्ध थोड़ी कोई बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। नागौर की बात है, 1993 में दो तीन दिन का कोई कार्यक्रम था, तो एक बेचारा सीधा साधा गांव का आदमी आया, दोपहर की सत्संग थी। महाराज जी ने कहा कि पूछो भाई कोई बात पूछो, तो वो ऊपर से तो उगा हुई हो बिल्कुल खुला था, बनियान वनियान कुछ नहीं, और गोटे तक उसकी धोती चढ़ाई हुई, किसान लगा वो खड़ा होकर के मारवाड़ी भाषा में बोलने लगा कि महाराज एक बात आपने पूछू, आप क्या हो तो मैं पूछू, आप माफ कर दीजिए। तो पूछो कहीं बात है पूछो। क्या महाराज मैं आज सुनी है कि जठे आप चौमासो करो बट बरसात को नहीं हुए, एकदम खुला ही बोल दिया वो। अब महाराज जी अब खूब देर तक हंसे, हंस करके कहा देख भाई मेरे को इतना बड़ा बना दिया आपने कि जो बरसात भगवान के इंद्र के हाथ में है वो मेरे कारण से ना हो। क्या महाराज मैं तो आज सुनी कि बरसात हुए जना आप रहे सत्संग में लोग आने में बाधा पड़े, लोगों ने बाधा नहीं पड़े ली थे बरसात में बट रोग दी ऊपर। महाराज जी इतो बड़ी भाई मारे में ताकत को नहीं, इतो बड़ो मत मानो थे मने इतो बड़ो मानो तो मारी बात नहीं भी मानो कि नहीं आ बात है कोई, किसी को हम बस में कर सकते हैं क्या? भगवान के पास में आए कहने लगे महाराज जब से अक्रूर जी गए तब से बरसात नहीं हो रही, अक्रूर जी को बुलाओ। भगवान ने कहा देखो अक्रूर जी को तो बुला लेंगे, 100 बार गरज करके बुला लेंगे, पर उनके जाने से बरसात नहीं हो रही है हमारे मन में नहीं जसती है कि चलो महाराज तो ही बुला लो, बुला लो। सब लोगों को भेजा अक्रूर जी को ढूंढ के लाओ, अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी आए और भगवान अक्रूर जी को सभा में ले गए कि अक्रूर जी महाराज आप हमारे पिता के भाई चाचा लगते हो, आप संसार में सत्यवादी हो, आप सच्ची बात बताओ कि आपको मालूम है क्या कि वो मणि कहाँ है? हाँ महाराज मणि मालूम है, ये मणि मेरे पास है, हमने सब धनवा को बहकाया था, हम मणि के 64 मण सोने के लालच में फंस गए थे, तो कोई बात नहीं सर, तो ये मणि महाराज अब आप राजकोष में जमा करा दोगे? नहीं हम राजकोष में जमा नहीं कराएंगे, ये मणि आप अपने पास में रखिए। अब राजकोष जाने और आप जाने मणि को हम नहीं रखेंगे, ये मणि आपके पास ही रहनी चाहिए क्योंकि बलराम जी भी मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं, बलराम जी भी मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं। भगवान ने उनको वापस दे दिया। सत्राजित को तो ये भी कहा था भगवान ने कि 64 मण सोना तुम्हारे वहां रोज पैदा हो तो रोज हमारे वहां पर पहुंचा देना, मणि तो तुम रखो और 64 मण सोना हम रखेंगे। यहां कहा कि नहीं ये मणि तुम अपने पास रखो। इस कथा को जो सुनता सुनाता है उस आदमी के मिथ्या कलंक दूर होते हैं। अब और विवाह की बात सुनो, भगवान एक बार इंद्र प्रस्थ आए और वहां एक बार वो इंद्र जो है राजा अपने मित्र अर्जुन के साथ जंगल में घूमने गए, वहां पर एक तपस्या करती हुई कालिंदी को देखा। ये कालिंदी क्या है? ये जल तत्व है। अर्जुन ने पूछा कि आप किसकी आराधना करती हो? कि मैं तो विष्णु को चाहती हूं और वो वासुदेव के रूप में यहां आया हुआ है। अच्छी बात, कृष्ण भगवान गए कालिंदी के पास और उसको वहां से इंद्रप्रस्थ लाए और फिर द्वारिका में लाकर उन्होंने वहां पर विधिवत विवाह किया। तो ये कालिंदी जल तत्व है और राजादी देवी की कन्या थी मित्र विंदा। वहां पर भगवान गए सब राजाओं के बीच में खड़े रहे और वहां था स्वयंवर कि भाई कोई राजा ले जाए, तो भगवान ने वहां प्रकट होकर के कहा खबरदार कोई खड़ा हो गया तो इसको तो मैं ले जाऊंगा। प्रसय बलपूर्वक ले गए। यह है अग्नि तत्व का विवाह, अग्नि तत्व के साथ विवाह। और फिर एक सत्या नाम की कन्या थी, कौशल देश के राजा की कन्या, तो उसके यहां विवाह में शर्त थी 7 बैल को नथ देगा वही उसके साथ विवाह करेगा। और 7 बैल को कौन से नथ है, कोई नहीं नथ सका। उसका विवाह नहीं हुआ। तब वो भगवान घूमते घूमते उस देश में आए और भगवान का स्वरूप देखा उस सत्या ने, नागनजीति भी नाम था उसका। उसने भगवान का स्वरूप देखा तो उसके मन में बड़ी उमंग आई, ओहो जिनके चरणों की धूली को ब्रह्मा जी अपने सिर पर रखते हैं, जिनके चरण धूली को बड़े बड़े लोकपाल और शंकर भगवान अपने सिर पर रखते हैं, ऐसे ये परम आराध्य सर्वलोकाराध्य श्री कृष्ण हमारे कैसे किस विधान से प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसे मन में उमंग आई। जब उनके मन में उमंग आई तो भगवान ने राजा से कहा, राजन हम तो एक विशेष काम से आए। क्या महाराज? कि आपकी कन्या के साथ हमारा विवाह कर दो। तो राजा ने खूब जो शर्त रखी, 7 बैलों को भगवान ने नथ दिया, धूम धमाके के साथ विवाह हो गया। अब जो है देखते हैं, देखो अब इस विवाह के पश्चात ये क्या है, ये मनस तत्व के साथ विवाह, मनस तत्व के, क्यों उसके मन में आई ना बात, ये मनस तत्व है। और अब 7वां विवाह है, भद्रा नाम की एक कन्या थी, श्रुत कीर्ति की भद्रा। उसने पहले से ही कह दिया, देखो मेरा निश्चय है आप लोग कोई शादी विवाह के लिए न तो स्वयंवर रचना न आप कोई और कोई अपने मन में विचार लेना, मेरा पूर्ण निश्चय है कि मैं कृष्ण के साथ विवाह करूंगी, पूर्ण निश्चय है। तो ये निश्चय करने की वृत्ति का नाम बुद्धि है, ये बुद्धि तत्व के साथ विवाह हुआ। और मध्य देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा। वहां क्या हुआ, जैसे अर्जुन के लिए वो एक यंत्र चलता था और उसमें से देख करके प्रतिबिंब को देख करके तीर लगाने की बात थी, ऐसे ही उसकी बात थी। पर उसमें एक अंतर था कि वो यंत्र तो वहां चल रहा है, उसका प्रतिबिंब यहां पड़ रहा है, यहां का प्रतिबिंब यहां पड़ता है। अब यहां इसको देखते हुए इस ढंग से आपको बाण लगाना है कि वो बाण वहां जाकर लग जाए, ऐसा था वो। कोई राजा उसको नहीं कर सके। अंत में भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। ये क्या है, ये वायु तत्व है, वायु तत्व। और भी ऐसे और बताते हैं कि भौमासुर के, ये हो गया 8 विवाह तो हो गए। अब कहते हैं कि भौमासुर के यहां 16,000 रानियां, 16,000 राजकुमारियां थी। 16,000 में क्या, 10 तो इंद्रियां, 5 प्राण और 1 चित्त वृत्ति, ये 16। क्योंकि चित्त वृत्ति इंद्रियों के और प्राण के साथ सदा रहती है, ये 16 एक ही रहते हैं। तो 8 तो वो हुई और 16 ये हुए, तो 16,108 रानी। अभी हजार का क्या अर्थ है कि ये सब भगवान के यहां हजारों हजारों के रूप में भगवान के अधीन रहने वाली चीज है। भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि, अहंकार, मन और बुद्धि, ये 8 प्रधान तत्व है जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है, प्रधान चीज। ऐसे भगवान की पट रानियां थी, प्रधान रानियां। ऐसे इंद्रियां और 5 प्राण और 1 चित्त, ये 16 चीज हजारों की संख्या में भगवान के अधीन रहती है। इसलिए 16,108 विवाह है ये। राजा ने कहा कि भौमासुर की क्या बात है महाराज? अरे भौमासुर की क्या बताए, भौमासुर ने बड़ा उत्पात मचाया। जी ये क्या किया महाराज, एक तो इंद्र की माता थी अदिति, उसके कुंडल छीन लाया, तो देवताओं के साथ उसकी एकदम जो है लड़ाई वो हो गई, खटपट हो गई। और जो है दूसरा, वो वहां पर बहुत से राजकुमारियों को अपने यहां कैद खाने में डाल दिया। तो फिर भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया। सत्यभामा, सत्यभामा है ये भूमि की बेटी है, भूमि तत्व है। और भौमासुर है, भौमासुर भूमि रपत्यम पुमान भौम है, जो भूमि का बेटा है वो भौम कहलाता है, भूमि का बेटा है वो भौम कहलाता है। तो ये जो भौमासुर है ना, ये भौमासुर भूमि का बेटा था तो भगवान उस सत्य मामा को साथ में लेकर के आए कि देखो सत्य मामा घर में कलह करोगी, तुम्हारा बेटा कैसा है देख लो। अब युद्ध के अंदर कभी भगवान स्त्री को लेकर आएंगे कि यहां पहली बार आए हैं गरुड़ पर बैठा के लाए। तो उसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर आसाम की तरफ है, प्राग ज्योतिषपुर। उसने ऐसा प्रबंध किया चारों तरफ ऐसी मशीनें लगा दी खूब, तो पहले वायु ही वायु चले आदमी वहीं पर, वो वायु से निकल ऐसा गैस चले उधर गया वो उधर गया, जैसे तैसे कोई वायु को जीत ले तो फिर वहां पर जल की बौछारे, फिर वो अग्नि की बौछारे, ऐसे चारों तरफ अग्नि के यंत्र, जल के यंत्र, वायु के यंत्र लगा दिए, कोई भाई उसको जीत नहीं सका, कोई नहीं जीत सके। तो भगवान ही वहां पर गए, सुदर्शन चक्र से सब माया उसकी तोड़ते गए, फिर बड़ी भारी सेना आई, सेना को भी खत्म कर दिया और फिर जो है भगवान ने उसको भी जाकर के मार दिया। मारने के बाद में अब जो है वो भूमि वही सत्य भामा वो कहने लगे कि हे महाराज आपने बड़ा अच्छा किया, जब आप संसार को बनाने लगते हैं तब रजोगुण को स्वीकार करते हैं, संसार को पालने लगते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, और जब संसार का संहार करते हैं तब तमोगुण को आप स्वीकार करते हैं। देखो जैसे बच्चा है ना, उस बच्चे के लिए माँ तीनों ही रूप बनाती है, डराती भी है, धमकाती भी है, प्यार भी करती है, दूध पिलाती है। उस समय में माँ में सत्वगुण जो है सत्वगुण का रूप ज्यादा होता है, और जो है बच्चा बच्चे को धमकाती है, मारती पीटती है, तब तमोगुण का रूप होता है। बच्चे के उत्पत्ति में रजोगुण का रूप होता है, ये होता है। तो पृथ्वी कहने लगे कि महाराज जी आपके रूप बनते रहते हैं, अब ये भौमासुर का लड़का है इसको आप यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा दीजिए। तो उसका लड़का था, उसको सहदेव उसका नाम था, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। भगवान ने कहा भाई तुम्हारे यहाँ राजकन्याएं कैद में है ना, कि हाँ महाराज कैद में है, कैद में 16 16। ये देखो इंद्रियां प्राण और चित्त ये कभी अलग नहीं होते, एक साथ रहते हैं सब, ये सदा साथ रहते हैं, इसीलिए सूक्ष्म शरीर कहलाता है ये। इन 16 के साथ में एक बुद्धि और मिल जाती तो 17 हो जाते हैं, पर 16 का तो एक साथ, कोई 17 मानते हैं कोई 16 ही मानते हैं, तो ये सदा साहचर्य रहता है इनका। तो भगवान ने कहा भी चलो तुम्हारे यहां पर वो राजकुमारिया कैद खाने में यहां है महाराज, राज उनको भगवान खुद कैद खाने से छुड़ाने के लिए गए, तो सबने एक साथ कहा भूयात पतिरयम मह्यम, ये हमारा पति होना चाहिए। तो भगवान ने सब राजकन्याओं को वहां से बड़े आनंद के साथ द्वारिका के लिए विदा किया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, तुम चलो जितने हम आ रहे हैं। फिर भगवान वहां से सीधे स्वर्ग में गए सत्यभामा को लेकर के। बात क्या हुई, बात तो हमारे नारद जी ने बिगाड़ी सब, नारद जी का तो काम है कुछ न कुछ कौतुक करना, संतों का काम है ये। भगवान की लीला में जैसे जैसे बछड़ा होता है, वो गाय जब दूध देने थोड़ा कम दूध देती है बछड़ा थोबा लगाती है, थोबा लगने से तो बछड़ा है ना वो गाय की जब थोबा लगाते तो गाय को खुशी होती है, खुशी होती है जब गाय दूध और देती है, बछड़े से बहुत खुश होती है, वो थोबा लगाए तो गाय राजियों के दूध दे देती है। ऐसे ही संत लोग क्या करते हैं, भगवान के थोबा लगाते हैं, और आपकी लीला दिखाओ और लीला दिखाओ। तो एक दिन नारद जी ने क्या किया कि स्वर्ग का एक फूल लिया, स्वर्ग का फूल लेकर के और वो गए कि आज एक लीला और देखनी है। तो जिस घर में रुक्मणी जी थे वहीं गए जाकर के दे दिया। भगवान ने वो फूल कहां से लाए नारद जी की, ये तो साहब हम स्वर्ग लोक से लाए। अच्छा अच्छा ले ओ रुक्मणी स्वर्ग का फूल रखो। भगवान ने सहज भाव से दे दिया, नारद जी को लीला करनी थी, नारद जी बस वहां अपना दंड कमंडल लेकर के तंदूरा लेकर के सत्यभामा के महल में घुस गए। और वहां जाकर मुंह उतार कर कह रही उदास होके बैठ गए, माथे पर हाथ रख दिया। सत्य भामा जी कहले कि नारद जी, दुनिया का दुख दूर करने वाले आज आप दुखी क्यों हैं? मैं मेरे लिए थोड़े ही दुखी हूं, तुम्हारे लिए दुखी हो रहा हूं। मेरे लिए क्या बात हुई? कि बात तो ये हुई महाराज कि ये जो स्वर्ग का फूल था वो मैं लाकर के कृष्ण को दिया, तो कृष्ण ने सत्य भामा को ही दे दिया, एक रुक्मणी को दे दिया, आपको नहीं दिया। मैंने देखा कोई एक पत्ता, आप भी देखते तो सही स्वर्ग का फूल का पत्ता भी कैसा होता है। अच्छा, हमको देखने के लिए भी नहीं दिया, रुक्मणी को ही दे दिया। हाँ महाराज, रुक्मणी को दे दिया। कहा अच्छी बात है। नारद जी चले गए। इतने में ही भगवान आए। क्यों सत्य भामा जी, आप आज उदास कैसे हो? सत्य भामा जी आंख निकालने लगी, उदास की बात बोलते हैं आप? आप देखिए, हमारे लिए वो एक फूल आया था, लेके आए थे नारद जी, एक पत्ता भी हमको नहीं दिया, पूरा का पूरा आपने रुक्मणी को दे दिया। अरे रे, नारद जी कौतुक करते हैं सत्य भामा जी, ये कौतुक करते हैं तो बताओ सत्य बात है कि नहीं? बात तो सत्य है, मैं उसको कुछ आदर ही नहीं देता हूं। मैं स्वर्ग के फूल का कहां आदर करता हूं? आप तो आदर नहीं करते हो, पर आपको चाहिए ना कि सबको देने का, तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मेरे महल में स्वर्ग, ये स्वर्ग का वृक्ष मेरे महल में लगे। अच्छी बात है, कल्प वृक्ष मेरे महल में लगना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो स्वर्ग में, और तुम्हारे सामने मैं लेके आता हूं। बस अब ठीक है, परंतु स्वर्ग में जाने से पहले देवताओं को मैं क्या दूंगा? देवताओं को उनके जो माता के कुंडल है वो भौमासुर ने ले रखे हैं, वो भौमासुर को मारूं और देवताओं के कुंडल ले जाकर उनको देऊं, तब देवता लोग मुझे वो स्वर्ग का वृक्ष मुझे देने देंगे? नहीं देने देंगे। हाँ ये बात तो है, तो चलो। तो भाई रुक्मणी जी भी बैठ रही है, सत्य भामा जी भी बैठ गई गरुड़ के ऊपर, और भगवान भी बैठ गए। इसलिए आए भगवान ने भौमासुर को मारने के बाद वो कुंडल ले जाकर देवताओं के दिए। देवता बड़े राजी, वाह वाह महाराज, हमारे तो माँ की शान रह गई, जो माँ के आभूषण असुरों के पास में रहे, हमारे लिए शर्म की बात थी, बड़ी आपकी। भगवान ने कहा एक काम तुम भी करो। कि क्या? ये तुम्हारा जो कल्प वृक्ष है हमारे द्वारिका में पहुंचा दो। नहीं महाराज, ये स्वर्ग का नियम है, यहाँ का कोई वृक्ष कहीं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारी माता के कुंडल असुर ले गया, तुमको मारपीट के ले गया, तब तो तुम्हारा नियम कहीं नहीं गया, और हम सज्जनता से मांगते हैं तुम नियम बताते हो। भगवान ने ले गदा और इंद्र को मारना चालू किया। इंद्र के दो चार यहाँ गदा पड़ी, पैर पकड़ लिए, महाराज गलती हो गई, ये वृक्ष ले जाओ। तो फिर वो वृक्ष ले गए और स्थापित सत्य भामाया गृहोद्यानोपशोभन, सत्य भामा के घर पर ले जाकर उसको रख दिया। और फिर भगवान इतने में द्वारिका आए, और द्वारिका आकर के और 16,100 रूप बनाया, और इतने रूप बना करके उनके साथ बड़े धूम धमाके के साथ विवाह हो गया। और वे ऐसी पतिव्रता स्त्रियां थी कि भगवान के हर सेवा को वे स्वयं अपने हाथ से करती थी, सैकड़ों दास दासियों के रहते हुए भी। पति की सेवा है ना, पति की सेवा तो हम स्वयं करेंगी, इसलिए पति सेवा सबसे बड़ी चीज है, ऐसा वो मानती हुई भगवान की बड़ी आनंद के साथ सेवा करने लगी। आज की कथा को अब यहीं विराम देते हैं, कल कथा का नया रूप चालू होगा। आप लोग जिस उत्साह से सुन रहे हैं उस उत्साह को कायम रखते हुए आप आगे की कथा को भी सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण
नाथ नारायण
राम राम। एक विशेष सूचना है, हमारे रामोला राम द्वारा के जो वहाँ स्थानाधिपति है, एक विशेष सूचना आपके सामने रख रहे हैं। आप जो जाने वाले सूचना सुनते सुनते जाएंगे। आप
राम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में वंदन, संत महापुरुषों को प्राम और राम सभा में विराजे हुए सभी सत्संग भाई बहनों को प्रणाम। विशेष सूचने में यहाँ जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, आप सब बहुत सद्भागी हैं। ये पुण्य रूपी कथा सुन रहे हैं तो ये जो कथा हो रही है उसी प्रकार से रामल राम मोहल्ला रामद्वारों का कुछ जीर्णोद्धार हुआ है, नवीन रूप दिया गया है। तो हमारे संतों के मन में थोड़ा विचार आया कि राम द्वार का जो नवीन रूप दिया गया है तो ऐसा कोई कार्य शुभ कार्य किया जावे जिसका सभी जनता जनार्दन को लाभ प्राप्त हो। इस सोच के साथ श्री खेड़ापा महाराज श्री से अर्ज करते हुए कहा कि महाराज श्री, श्री सिंहस्थल पीठाधीश्वर महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक आयोजन हमारे राम द्वारा जो जीर्णोद्धार हुआ है उसके उपलक्ष में रखना चाहते हैं। तो महाराज खेड़ापा महाराज श्री ने आज्ञा दे दी और उनकी आज्ञा प्राप्त करने के बाद महाराज श्री के चरणों में निवेदन किया गया तो हर्ष के साथ और बड़ी खुशी के साथ महाराज जी ने वो विनंती स्वीकार कर ली और उन्होंने ये जो कार्यक्रम है वो पास कर दिया और वो अब होने जा रहा है। अपना जो वर्ष आता है नया साल दीपावली, दीपावली के ठीक दो तीन दिन के बाद रामवल्ला राम द्वारा जो नागौरी गेट के बाहर आया हुआ है वहां पर सामने एक महादेव मैरिज हाउस है, उसके अंदर ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा राम द्वारा की ओर से। तो आपसे सबसे हार्दिक निवेदन है कि आप श्री जो तारीख पड़ेगी आप याद रखना 12 नवंबर से 19 नवंबर तक ये श्रीमद् भागवत सप्ताह महाराज श्री के मुखारविंद से आप सुन पाएंगे। तो आप लोगों से बारंबार ये निवेदन करते हैं संत समाज की तरफ से राम द्वारा की ओर से कि आप वो प्रोग्राम का भी हर्ष के साथ लाभ उठाने की कृपा करें और अपना जीवन इस प्रकार से सफल बनावे। महाराज श्री की सप्ताह इसीलिए हमारे को ठीक लगी कि आजकल सप्ताहें तो बहुत होती है भाई और कथाकार भी बहुत बड़े हुए हैं, कई छोटे मोटे ब्राह्मण देवता संत महात्मा कई कथाकार हो गए हैं और मैं कोई गलती करता हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, पर एक ऐसे व्यापार के रूप में भी इस मार्ग को लिया जा रहा है ऐसा मैं मेरी समझ से थोड़ा कह रहा हूँ। पर महाराज श्री जो कथा फरमा रहे हैं और जो अनुष्ठान के रूप में ये कथा है कोई भी इतनी गहराई से और इतने प्रसंग पूर्ण रूप से कोई करता नहीं और सुनने वाले भी ऐसे लोग है कि दुनिया को भी ऐसा लगता है गावे बजावे छेड़े तान दुनिया रखे उसका मान, ऐसे लोग भी ऐसा चाहते हैं। पर ऐसे लोग बहुत सद्भागी हैं कि जो ऐसे महापुरुषों की अनुष्ठान रूप में जो कथा होती है वो सुन पाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी वही ये जो दृश्य है ना इसी प्रकार से है। कोई आडंबर नहीं है, बस प्रेम से मस्ती से महाराज श्री अपने भाव के अंदर आप लोगों को कथा सुनाते हैं, और हृदय का भाव होता है वो दुनिया क्या करती, कौन कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन गया, कोई नहीं, अपनी मस्ती के अंदर कथा फरमा रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों की कथा रखी गई है, तो आप प्रेम से ये कथा भी रसपान करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला तीरथ रत निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मधनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारी, शुभ औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत स्वरहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, रसिकाय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजानकी। आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की।
श्री कृष्ण रुक्मणी कांत गोपी जन मनोहर, संसार सागरे मग्नम माम उद्धर जगत गुरु। ओम शांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिगाय श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय।